ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच, प्रियायः प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगमच्छत्तः तर्हेव विरचीकरात् सर्वकामदुघं दिव्यम् सर्वरत्नसमन्वितम् सर्वार्ध्युपचयोदर्कम् मणिस्तम्भैरुपस्कृतम्। मैत्रेय उवाच, श्री मैत्रेय जी ने कहा, प्रियायः अपनी प्रिय पत्नी के, प्रियाम प्रिय, इच्छान अनुइच्छान इच्छा से, कर्दमः कर्दम मुनि, योगाम योग में, आस्थितः स्थित होकर, विमानम विमान, कामगां इच्छा के अनुसार चलने वाला, छत्तः हे विदुर जी, तरही एवा तत्क्षण ही, आविरचीकरात आविर्भूत कर दिए। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, अपनी प्रिया की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया और तुरंत ही एक हवाई महल उत्पन्न कर दिया जो उनकी इच्छा के अनुसार यात्रा कर सकता था। कल हम लोग सुन रहे थे देहूति ने किस प्रकार कर्दम जी का सेवन किया, उनकी परिचर्या की, और कर्दम मुनि अपनी पत्नी देहूति के सेवा से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, भगवान की कृपा से मुझे देवताओं को भी जो सुलभ नहीं है वे सब भोग सुलभ हैं, तो मैं तुम्हें दे सकता हूं, तुम इन्हें भोगो, तुम सिद्ध हो। ऐसा जब उन्होंने कहा तो देहूति ने कर्दम जी से कहा, सर्वप्रथम आप हमारे लिए ऐसा सुखद घर बनाइए जिसमें हम दोनों रह सकें, और हमें संतान चाहिए तथा हमारा यह देह क्षीण हो गया है, दुर्बल हो गया है, तो इसको पुष्ट करने का उपाय कीजिए। यहां मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रियायः प्रियमन विच्छन कर्दमो योगमास्थितः विमानम कामगम छत्तः तरहे वा विरचि करत। संबोधन कर रहे हैं विदुर जी को, हे विदुर, अपनी प्रिया का प्रिय करने के लिए कर्दम जी योग शक्ति का स्मरण किए, योग में स्थित होकर, और उसी क्षण तरही एवं कामगम विमानम आविरचि करत, आविर्भावयाम बभुव, तुरंत प्रकट कर दिए। यहां पर ध्यान देना चाहिए कि कर्दम जी योग शक्तियों के फल पर लुब्ध नहीं थे, ये तुल में अपार शक्ति थी, कुछ भी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन वे भगवान के परम भक्त थे, अतः इन सब भोगों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। रुचि उनकी भगवत कथा में थी, जप में थी, भगवान के पूजा में रुचि थी, पर अपनी प्रिया का प्रिय करने के लिए उन्होंने इस विमान की सृष्टि कर दिया, तुरंत प्रकट कर दिया। यह प्रश्न हो सकता है कि कहां पर विमान था जिसको प्रकट कर दिया गया, कहीं नहीं था वो, कहीं ऐसा नहीं था कहीं स्थित था और वहां से ट्रांसपोर्ट करके मंगा दिया गया, या इस कंपनी का बनाया हुआ उस कंपनी का बनाया हुआ, तुरंत तरही एवं, तरही एवं का अर्थ उसी क्षण जिस क्षण देहूति ने इच्छा किया कि हमको ऐसा चाहिए घर, उसी क्षण कर्दम जी ने उस अद्भुत विमान को प्रकट कर दिया। वह विमान क्या था? वास्तव में वह एक हवा महल के समान था जो आकाश में सब जगह चल सकता था। कामगम, काम का अर्थ इच्छा, इच्छा के अनुसार चलने वाला था। और उस विमान का वर्णन आगे चल करके किया जाएगा। बहुत बड़ा विमान, बहुत बड़ा, जिस पर एक नगर ही बसा हुआ था, ऐसा समझिए। बहुत बड़ा किला देश, बहुत हजारों हजारों भवन थे उसमें, और सब प्रकार के सुख 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 की सामग्रियां थी। मैत्रेय जी 9 श्लोकों में विमान का वर्णन किए। आज के युग में तथाकथित वैज्ञानिक गण इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सकते। वो कहेंगे ये सब कपोल कल्पना है, ये सब झूठी बात है। और वास्तविकता ये है कि झूठा उनका विचार है, उनको रियलाइजेशन है नहीं सूक्ष्म शक्तियों का। यह जो जगत बना हुआ है यह भी अपने कारण में पहले रहता है। ऐसा नहीं था कि कहीं रचा हुआ जगत और भगवान ने ला करके रख दिया। यह पृथ्वी गंध से बनी है और आकाश शब्द से बना है, वायु स्पर्श से बना हुआ है, अग्नि रूप से बना हुआ है और जल रस से बना हुआ है, जो इन सब वस्तुओं का कारण है। सूक्ष्म तन्मात्राएं उनको कहते हैं, बाहर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा लेकिन वही वस्तु इतने बड़े एलिमेंट के रूप में मैनिफेस्ट हो सकती है। यह श्रीमद् भागवत में बात लिखी गई है किस तरह से यह जगत प्रकट हुआ, और वास्तव में सबके कारण है भगवान, सर्व कारण कारण। तो कारण इस तरह से हैं, भगवान की बहिरंगा शक्ति है जिसके 3 गुण हैं, तीनों गुणों में रिएक्शन होता है तब महत तत्व उत्पन्न होता है, और महत तत्व के बाद अहम तत्व उत्पन्न होता है, अहम तत्व से फिर पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। तन्मात्रा सूक्ष्म सटल स्थिति कहते हैं जगत, और इसके बाद जगत प्रकट हो जाता है। कभी कभी विचार किया जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा है गुड़ की भेली या चक्की चक्करी, गुड़ बनता है तो इतना बड़ा बड़ा ढोका बनाया जाता है, चाहे ज्यादा बड़ा बनाया जाए, ये प्रारंभ में वह रस होता है, लिक्विड होता है, तरल पदार्थ, पर यदि उसको औंटा जाए उबाला जाए तो धीरे धीरे वो गाढ़ होते 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 ठोस हो जाता है। पर वो तो, ये तो बात स्पष्ट है कि वो वस्तु ऑलरेडी उसमें है ही इस तरह से, परंतु बच्चों को या ना समझ लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि एक दिन एक समय ऐसा आ सकता है कि कुछ समय के बाद इसको औंटने पर उबालने पर ये इतना कड़ा रॉक चट्टान बन सकता है गुड़ का, या मिश्री भी इसी तरह से बनती है रस से, तरल पदार्थ से। ये तो समझ में आती होती है, सूक्ष्म का अर्थ ही है, हमारी इंद्रियों के द्वारा ठीक से समझ में नहीं आएंगे। असली सूक्ष्म का अर्थ होता है, सूक्ष्म को ही छोटा कहते हैं, छोटा छोटा छोटा। तो उन सूक्ष्म तन्मात्राओं से जगत प्रकट हुआ है। कर्दम जी ने अपनी योग शक्ति से एक विमान को प्रकट किया, देखने से स्पष्ट हो जाता है कि सभी चीजें सूक्ष्म से ही निकली हुई हैं। सभी सूक्ष्म से निकली हुई है। तो कर्दम जी विमान की सृष्टि किए, उसके विषय में मैत्रेय मुनि कहते हैं कामगम विमानम। कामगम, कामगम काम के अनुसार गमन करने वाला, इच्छा के अनुसार चलने वाला। और यह भी बात थी कि इच्छा के अनुसार बड़ा भी हो सकता था और छोटा भी हो सकता था। वह आकाश में टिक सकता था, धरती पर उतर सकता था, किसी पर्वत की गुफा में बिल्कुल छोटा बन करके जा सकता था, इस तरह का विमान। यहां तो हम लोग विमान में देखते हैं केवल डैना पंख तक फैला सकते कहीं उड़ते या नीचे आते समय वो पंख को फैलाते हैं, फिर बाद में समेट लेते हैं। और नीचे पहिया जो होता है पैर जैसा, पक्षी के पैर जैसा, उसको भी उड़ने के बाद पेट में कर लेते हैं मशीन द्वारा, और उतरने से पहले उसको, क्योंकि जमीन पर डगरना होता है तो इसलिए उसको प्रकट कर देते हैं। ये तो साधारण बिल्कुल बात है, लेकिन पूरे विमान को एक सीसी में बंद कर देना, और सीसी ही नहीं बिल्कुल अदृश्य कर देना, ये तो योग शक्ति का काम। त्रिपुरासुर विमान बनाया था जिसको भगवान शिव ने मारा, तीनों विमानों को, तो वो कभी दिखाई पड़ते थे कभी नहीं दिखाई पड़ते थे, सारे देवता हार गए। जब मारने चलते थे तो कुछ पता ही नहीं चलता था कहां चला गया, वहीं देखते देखते अदृश्य हो जाता था। और कभी प्रकट होता था तो पहाड़ की तरह प्रकट होता था, और उस पर से सारे असुर लोग देवताओं पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा कर रहे थे। जब मारा जा रहा था उन लोगों को, देवता लोग मार रहे थे, भगवान शिव भी मार रहे थे, लेकिन कुछ भी परिणाम नहीं होता था। मैं दानव उस विमान पर एक ऐसा कुंड बनाया था अमृत रस का कि मरे हुए व्यक्ति को उसमें डाल दिया जाता था, वो जी जाते थे। ये सातवें स्कंध में कथा है। अब क्या कर, कितना मारे। तब भगवान गाय का रूप धारण करके गए और ब्रह्मा जी बछड़ा बने, तो गाय और बछड़ा ऐसा लग रहा था कि प्यासे हैं, तो जाकर के पीने लगे। तो असुर लोग भी गाय से द्वेष नहीं करते। आजकल के जो कसाई हैं ये तो मनुष्य है ही नहीं, राक्षस हैं जो गाय का वध करते। लोग गाय को देखे कि प्यासी है, बछड़ा भी प्यासा है, तो छोड़ दिए पीने के लिए, भगवान की माया से मोहित थे, और जाकर के वही अमृत रस दोनों पीने लगे, गाय बछड़ा, रोके नहीं। और वो लोग सोचे होंगे पिएंगे तो कितना पिएंगे, दो चार किलो पिएंगे, दो चार लीटर पिएंगे लेकिन ये बाप बेटा दोनों जब पीना चालू किए गाय बछड़ा के रूप में, तो पीते गए पूरा सोख लिए तो अब भगवान शिव ने मारा, सबको मार दिया, अंत में विमान को मारा, तीनों विमान को। वो तीनों नगर थे वास्तव में विमान, उसको त्रिपुर कहा जाता है। भगवान शिव ने अग्नि बाण द्वारा जला दिया, मार दिया, खत्म कर दिया, उनका नाम पड़ा त्रिपुरारी। इस प्रकार से ये सब सृष्टि है योग शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती है। कर्दम जी योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान की भक्ति से पूर्ण, इसलिए उन्होंने कामगम विमान की सृष्टि किया। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि तरही एवं उसी समय प्रकट कर दिया। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुछ योगी लोग हैं इस समय भी जो छोटी छोटी चीज प्रकट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए हाथ में बालू लिए, रेता, और बालू को चीनी बना देते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कितने का काम किए, मान लो एक रुपये का चीनी मंगा दिया, एक रुपये का काम किया, इतनी योग शक्ति करके, इतना योग की साधना करके, और एक दो किलो चीनी मान लीजिए कोई बना दे, अगर इतना चीनी बना दे कि सारा शुगर मिल बंद हो जाए, इतना मेहनत ना करना पड़े, तब माना जाएगा कुछ काम किया। कुछ नहीं करते हैं, पर आजकल के बुद्धू लोग इन्हीं बातों पर इतना चमत्कृत हो जाते हैं कि वाह 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 रे साधु, वाह रे जोगी, और वो भी करता है दूसरों से पैसा ठगने के लिए। लेकिन करदम जी को जो योग सिद्धि प्राप्त है वास्तव में अद्भुत है, भगवान की कृपा का प्रसाद। तो सुनिए उस विमान का वर्णन 9 श्लोकों में कर रहे हैं। सर्व काम दुघम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम सर्वर्धिपचयोदरकम मणिस्तंभ रूपस्कृतम। वह विमान सब प्रकार की कामनाओं को पूरा करने वाला था। उसमें कोई चढ़े तो एक मनुष्य को जितनी इच्छा हो सकती है, कामना हो सकती है, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, वो सब कुछ उसमें सुलभ था। सब कुछ, सारे इंद्रियों के भोग, सब कुछ। सर्व काम दुघम, सर्व का अर्थ है सब, काम का अर्थ है इच्छा, मनोरथ, संकल्प, और दुघम का अर्थ है दुह्यंते, प्राप्त होते रहते थे अपने आप, अपने आप प्राप्त होते रहते थे। यदि किसी की इच्छा हुई कि अभी मुझे अमृत चाहिए, तो तुरंत उसके सामने कुछ लोग लेकर उपस्थित हो जाते थे। ऐसी व्यवस्था थी। जब पहली बार मैं बॉम्बे गया था तो गेस्ट हाउस में ठहरने पर किसी ने पूछा कि आपको कुछ चाहिए, तो मैंने कहा कि हाँ चाहिए, तो तुरंत फोन दबाया रेस्टोरेंट में, बटन दबाया, उधर से एक आदमी लेकर के आ गया। तो ये तो मैकेनिकल प्रोसेस है वास्तव में। उसे बटन दबाना पड़ा और पहले से ही रेस्टोरेंट है और कनेक्शन रखा गया है कि भाई ये नंबर दबाओगे तो रेस्टोरेंट में जाएगा, ये दबाओगे तो रिसेप्शन पर जाएगा, ये ऑपरेटर के पास जाएगा, ये रूम सर्विस के लिए है। ये तो सब व्यवस्था पहले से है, ये सब आर्टिफिशियल है, स्वाभाविक नहीं है। लेकिन करदम जी का विमान ऐसा था कि कोई मन में अगर सोचे मुझे ये चाहिए तो वस्तु उपस्थित, सब कुछ उपस्थित, कुछ भी चाहिए। ऐसे विमान के, ऐसे घर की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। दिव्यम, और वह दिव्य था। दिव्य का यहां अर्थ है इस पृथ्वी पर मानव के द्वारा रचित नहीं था, यहां तक कि देवताओं के द्वारा भी रचित नहीं था, अलौकिक, मनुष्य की संकल्प शक्ति से बाहर की चीजें उसमें लगी हुई थी, सब कुछ दिव्य। दिव्य का कभी कभी अर्थ होता है स्वर्गीय, और कभी कभी अर्थ होता है अलौकिक, अप्राकृत। यहां दिव्य का अर्थ है देवताओं और मनुष्यों के शक्ति और संकल्प से बाहर की बात। सोच नहीं सकते कि हम भी ऐसा बनावे, या कहां से आया, कैसे आया। सर्व रत्न समन्वितम, और समस्त रत्नों से युक्त था। रत्न से तात्पर्य जैसे पद्मराग मणि या हीरा, जिसको माणिक्य कहते हैं संस्कृत में, डायमंड को माणिक्य कहा जाता है और सोने को स्वर्ण, और रजत आदि है। में चांदी की कोई चर्चा नहीं, इस विमान में चांदी लगा ही नहीं था, फिर इस्पात, रबर, लोहा, ये सब क्यों लगेगा, जैसे फालतू लकड़ी सकड़ी, ये सब कुछ नहीं लगा था। सर्व रत्न समन्वितम, सब प्रकार के रत्नों से बना हुआ था। ऐसा नहीं था कि उस पर वजन ज्यादा हो जाएगा तो उड़ेगा कैसे, ये होगा वो होगा। इसलिए विमान में इधर हल्की से हल्की चीजें देते हैं, जो मजबूत हो लेकिन वजन कम हो, और निश्चित रहता है कि एक पैसेंजर इतना ही वजन ले जा सकता है, ज्यादा बढ़ाना नहीं है, नहीं तो उड़ भी नहीं पाएगा, और उड़ा भी तो कहीं कहीं क्रैश हो जाएगा, डर बना रहता है। लेकिन वह विमान ऐसा नहीं, केवल रत्नों से ही बना हुआ था, और एक रत्न केवल सोना और हीरा आदि नहीं, सर्व रत्न समन्वित, सब प्रकार के रत्नों से, और वो भी रत्न इस पृथ्वी के नहीं लगे थे, सबसे थर्ड क्लास का सोना इस पृथ्वी पर पाया जाता है। देवताओं के लोक में जांबुनद हेम, जांबुनद सोना चलता है, बहुत उत्कृष्ट है, लाखों गुना उत्कृष्ट सोना है मनुष्यों के सोना से। और देवता लोग तो ये देखते हैं कि यहां लोग सोना पहन रहे हैं, सोना रखे हैं, तो सोचते हैं कि क्यों पत्थर टांग लिया है गले में, या लोग इसको बहुत निकृष्ट समझते हैं। देवता लोग तो ये समझते हैं जैसे कोई हड्डी का गहना बना करके चले, तो ऐसा उनको लगता है क्या पहने हुए वो लोग पहन रहे। यहां सबसे ज्यादा महत्व देते 22 कैरेट का सोना, बहुत महत्व देते हैं, लेकिन वास्तव में पीला पत्थर है, उसमें वो सब गुण नहीं है जो देवताओं के यहां सोना पाया जाता है और उसमें गुण होता है। सोना में भी सूक्ष्म गुण होते हैं, उसको धारण करने से मंगल होता है, कुछ और होता है, वो गुण यहां नहीं है। और कर्दम जी के विमान में जो रत्न लगे थे वो तो देवताओं के लोक में भी दुर्लभ थे, वहां से भी कुछ भी नहीं मंगाया गया था। सर्व रत्न समन्वितम सर्वर्धि उपचयो दर्कम, सर्वर्धि सब प्रकार के संपत्तियों का उसमें उपचय था। उपचय का यहां अर्थ है समूह, सब प्रकार की संपत्तियां थी और उनका उत्तरोत्तर विकास हो रहा था। उदर्कम, उदर्कम का अर्थ है जो वस्तु और बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, ऐसा उसमें जो भी रत्न लगे थे, जो भी संपत्तियां थीं, उनमें ह्रास होने वाला नहीं था, निरंतर वो संपत्ति बढ़ने वाली थी। कोई भी सुख या कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए उसमें पलंग रखा हुआ है या चमर रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ दिन के बाद उसमें घुन लग जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा या मूर्छा जंग लग जाएगा, नहीं, और उत्कृष्ट होने वाली वस्तु ये थी। ओल्ड इज गोल्ड, जितना ही पुराना होता है उतना ही और अच्छा होता है, उसमें ऐसी वस्तुएं लगी हुई थी और ऐसी संपत्ति थी। इधर के घर बनते हैं, मान लीजिए एसी घर बनाए हैं, और यदि बिजली कट जाए तो वही मरण जैसा होने लगता है, तब आदमी उस घर से निकलकर बाहर होना चाहता है कि चलो 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 बाहर थोड़ा सांस लें, तो सफोकेशन हो रहा है, दम घुट रहा है, हो रहा है। यहां की यह सब स्थिति है। लेकिन कर्दम जी के विमान में जो भी संपत्ति थी, जो भी ऐश्वर्य था, रिद्धि थी, दिन पर दिन बढ़ने वाली थी, बढ़ने वाली, उत्कृष्ट होने वाली, मणिस्तंभ रूपस्कृति कभी नहीं होती मणिस्तंभ रूपस्कृतम। और उस विमान में हजारों लाखों घर थे और स्तंभ जहां तहां लगे हुए थे। स्तंभ का अर्थ होता है खंभ, खंभ उसी को स्तंभ को खंभ, खंभा का पिलर्स, तो वे सब लगे हुए थे मणियों के, मणि के, न कि ये लोहा और सीमेंट और पत्थर के खंभा लगा दिए गए। मणि स्तंभ है, मणियों के, रत्नों के खंभे लगे हुए थे, इसे वो घर अति सुंदर लगता था। उपस्कृतम सुशोभितम, बहुत सुंदर लग रहा था। दिव्योपकरणोपेतन सर्वकाल सुखावहम, उस घर में जो भी वस्तुएं थी, उपकरण, उपकरण से तत्पर जो है सज्जा या कुर्सी, बैठने के स्थान या बर्तन, वस्त्र, जो कुछ भी था सब दिव्य थे। दिव्य उपकरण उपेतम, दिव्य ही उपकरण ही उपेतम, दिव्य उपकरण से युक्त था। विमान को देख करके, विमान की वस्तुओं को देख करके कोई ये नहीं जान सकता था कहां से मंगाई गई, कहीं की नहीं थी। ऐसा कोई व्यक्ति घर बनाता है तो घर में पलंग रखता है या बहुत सी चीजें रखता है, तो उस पर लिखी रहती हैं, या लोग पूछते हैं ये कहां से मंगाए, कहां से मंगाए, फर्नीचर कहां से लाए, सोफा सेट कहां से लाए, सब यही नरक से ही लाए हैं और कहीं से नहीं आए और वो भी लेने में कमर टूट जाती, इतना महंगा पड़ता है, ये पड़ता है, वो पड़ता है, उस पर आदमी क्या सुख भोगेगा। यहां तो ज्यादा से ज्यादा जस्ता या प्लास्टिक का गिलास रख दिए हैं एसी रूम में प्लास्टिक में पानी पी रहे हैं, कागज में खा रहे हैं, और मनुष्य समझता है हम कितने धनी हैं। मूर्ख कहें क्या धन है तुम्हारे पास, न बैठने के लिए कोई सुंदर आसन है, न कुछ भी, न खाने पीने के लिए, और प्लास्टिक रखा हुआ है और उसमें भी नॉन वेज खाते हैं राक्षस, और समझते हैं हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। कर्दम जी के घर की सामग्री को अब इतना ही कह करके मैत्रेय जी संतुष्ट हो जाते हैं और श्रोताओं के लिए छोड़ देते हैं कि दिव्य उपकरण उपेतन, दिव्य उपकरणों से परफार्मालिया से युक्त था। दिव्य का मतलब कहीं भी, न तो अमेरिका से आया था, न इटली से आया था, न भारत से आया था, न इंद्र के यहां से आया था, कहीं का नहीं था, सबसे उत्कृष्ट सारी वस्तुएं एक एक चीज। जुष्टम सर्वकाल सुखावहम, और वह विमान, वह हवाई महल ऐसा था कि सभी काल में सुख देने वाला था। गर्मी में ठंडा रहता था पूरा भवन ही, ऐसा नहीं कि कोई इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, बिजली के द्वारा उसमें एसी बनाया जा रहा, नहीं, उनमें जो वस्तुएं लगी थी वो गर्मी के दिन में ठंडा हो जाती थी और ठंडा के दिन में गर्म रहती थी। अपने आप के ऊपर मस्जिद बनाया गया था। उस मंदिर में एक ऐसा खंभा था जो हम लोग जाड़ा में जाकर छूते थे तो गर्म लगता था, मतलब ठंडा नहीं लगता था, यह कहने का, ठंडा बिल्कुल नहीं लगता था, और गर्मी के दिन में जब जाकर छूते थे तो थोड़ा थोड़ा ठंडा लगता था। शायद वो अभी भी रखा गया होगा। इस तरह के पत्थर या सामग्रियां थी कि अपने आप सभी काल में सुखन, चाहे गर्मी का मौसम हो या जाड़ा हो, बरसात हो, सब समय सुखन। सुख आवहम, उस सुख को लाते थे इंद्रियों के लिए अत्यंत अनुकूल सब कुछ, सर्वकाल सुखावह। पट्टिका भी पताका भी विचित्रा भी अलंकृतम, और वह विमान सभी घरों में सब तरह से पट्टिकाओं द्वारा पताकाओं द्वारा सुशोभित था। पट्टिका कहते हैं कम विस्तार वाले कपड़े, पट्टिका इधर क्या कहते हैं, कपड़ा काट काट करके सीसी करके और लटकाया जाता है, पट्टी पट्टिका इसमें कहा गया। सारे घरों में यह अलंकार था। और पताका, पताका कहते हैं बड़े बड़े झंडे को, बड़े ध्वज को पताका कहते हैं, और पट्टिका कम विस्तार वाली, कम विस्तार के कपड़ों को बांध बांध करके टांगा जाता है। इनके द्वारा वह भवन, वह विमान अलंकृतम, पट्टिका भी पताका भी विचित्रा भी अलंकृतम, विचित्र भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े और अद्भुत सुंदर पताकाएं ये सब लगाई गई थी। सरक भीर विचित्र माल्या भीर मंज सिंजत सडंग्री भी। उस घर में, उस विमान में चारों तरफ ऐसी ऐसी मालाएं थीं, ऐसे ऐसे फूल थे जिन पर भावरे मंडरा रहे थे, सिंजत सडंग्री भी, कैसे फूल थे, कैसी मालाएं थीं, इसके विषय में मैत्रेय जी कहते हैं अब हम क्या बताएं। विचित्रा भी अद्भुत अद्भुत मालाएं टंगी हुई थी जिन पर भौंरे मंडरा रहे थे, बिल्कुल ताजे फूल और अद्भुत फूल। सगभीर विचित्र माल्या भी, माला की विशेषता बताई जा रही है, विचित्र माल्या भी। माल्य कहते हैं पुष्प को, जिससे माला बनाई जाए उसको माल्य कहा जाता है। श्रक का अर्थ है माला और माल्य का अर्थ है पुष्प। ऐसी मालाएं सब जगह टंगी हुई थी जिनमें अद्भुत फूल लगे हुए थे और उन फूलों पर भौंरे भन 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 कर रहे थे। तू कुल क्षम कौशेर नाना वस्त्र विराजितम, और छोटे और बड़े अनेक प्रकार के वस्त्र टंगे हुए थे, अथवा सभी घरों में सब ओर पहनने के लिए उत्तरीय वस्त्र ओढ़ने के लिए और नीचे के वस्त्र सब रखे हुए थे, रखा हुआ था, अपने आप उपस्थित था सब कुछ। कोई व्यक्ति उस विमान में जाए तो बाहर से बेडिंग लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं थी, कुछ भी नहीं। यहां तो किसी भी होटल में जाइए, चाहे फाइव स्टार में, कुछ में अपना लेकर कहीं जाना पड़ता है सब कुछ। कोई कोई चीज देते हैं और वही पंचायती हजारों लोगों का यूज किया हुआ गंदा रहता, रोज रोज तो बदलते रहते हैं, वास्तव में रोज बदलते रहते। वो बेड या पीने के लिए कोई बर्तन रखे हैं, कुछ भी रखे हैं, वो सब व्यभिचारिणी वस्तुएं होती। पता नहीं कौन आदमी आकर आज सोया, कल कौन आकर सोएगा, कौन जवान मलेच्छ कोई भी आएगा सोएगा। ऐसे बेड पर सोना ये तो अपनी अधोगति करना है वास्तव में। यह करदम जी के विमान में जो वस्तुएं रखी गई थी वो सब नित्य नूतन होती रहती थी, पहनने के वस्त्र, ओढ़ने के वस्त्र, दुकुल क्षम कौशे, और सारे वस्त्र रेशमी थे। इस प्रकार के बहुत से वस्त्रों द्वारा वो वस्त्र वो विमान सुसज्जित था। ऊपरी ऊपरी भी न्यस्त निलये सु पृथक पृथक क्षिप्ते कशिप भी कांतम पर यंक व्यजनासन। वह विमान अनेक भवनों से सुशोभित था, कैसे कैसे ऊपरी ऊपरी अनेक महल बने थे इस विमान पर। ऊपरी ऊपरी का अर्थ है ये मत समझिए कि ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं केवल आज की चीज है, एक के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, चौथा, ऐसे सैकड़ों मंजिल भवन बने हुए थे उस पर। और ऐसा नहीं था कि चढ़ने के लिए लिफ्ट चाहिए, एलिवेटर चाहिए, अपने आप जो इच्छा होती थी उस मंजिल पर हमें जाना है तुरंत व्यक्ति वहां पहुंच जाता था। अपने आप सोचते हैं, कोई आर्टिफिशियल एलिवेटर की जरूरत नहीं होती थी, या सीढ़ी। और ये लिखा रहे कि अगर फायर लगे तो एलिवेटर से मत उतरिए, सीढ़ी का प्रयोग कीजिए, इससे मतलब आग लगने की संभावना रहती ही है। इस संसार में ये सब असमंजस है, गड़बड़ी है। सरकार का एक विभाग ही काम करता है, उसको फायर विभाग कहते हैं। फायर का दुश्मन है लेकिन फायर विभाग कहते हैं। जो कहीं आग लगे तो उसको बुझाने के लिए, समन करने के लिए एक डिपार्टमेंट है ना? क्यों है? क्योंकि आग लग ही जाती है। इस संसार का स्वरूप है, कितना भी आप सावधान रहिए कहीं ना कहीं आग लग जाती है। तो इधर लिखे रहते हैं कि अगर आग लगे तो कृपया लिफ्ट से मत उतरिए, चलिए तुरंत सीढ़ी का प्रयोग कीजिए, नहीं तो लिफ्ट भी आग में जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऊपरी ऊपरी विन्यस्त, एक के बाद ऊपर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से सैकड़ों महल थे, घर बने हुए थे। कोई प्रश्न कर सकते हैं कि इतने घर की क्या जरूरत थी? रहने के लिए दो हैं, लेकिन दो ही नहीं है, पहले तो 1000 दासियां उस पर रहेंगी, 1000 दासियां, उनका अलग अलग महल, उनका अलग अलग सब कुछ। और भी इस तरह से बनाया गया, कोई जरूरी नहीं था कि दो ही रहेंगे। यह है योग शक्ति का चमत्कार। ऊपरी ऊपरी विन्यस्त निलय से पृथक पृथक, और सब पृथक पृथक निलय। निलय का अर्थ होता है नितराम लयो जस्मिन स निलय, जिसमें आदमी पूरा छिप जाए, बाहर से संबंध न रहे, उसको निलय कहते हैं। घर, घर को निलय कहा जाए शीशा से, और उसके भीतर रहना, लोक से अपने को छिपा लेता है व्यक्ति, इसलिए उसको निलय कहते हैं, लय हो जाता है। तो सारे भवन अलग अलग थे। छिपते ही कश्यप भी कांतम पर्यंक व्यजनासन, और उन सभी घरों में विविध प्रकार के पलंग थे, पर्यंक और व्यजन, पंखे और आसन, और कश्यप भी उन पर्यंक जहां तहां गद्दे बिछाए गए थे, बहुत सुंदर, पलंग पर, कुर्सी पर, या ऐसे भी फर्श पर भी, जहां बहुत ज्यादा थे सब जगह। तो मैत्रेय जी कहते हैं क्षिप्तम, क्षिप्तम का एक अर्थ है फेंके गए थे, कहा था फेंके गए थे, फेंकने का मतलब कि प्रचुर मात्रा में थे, ये अर्थ है क्षिप्तम का। समझना चाहिए ला ला करके कही गई फेंक दिए गए थे, मतलब वह भवन भरा पड़ा था इन सब चीजों से, बिखरे हुए थे सब। किसे? कश्यपु भी, बेडों से कश्यपु, बहुत कोमल गद्दों से, पर्यंक व्यजनाश नहीं, पर्यंकों से, पलंगों से और व्यजनों से, पंखा चामर आदि से, और आसन ही, और आसनों से, आसन आस्यते अस्मिन इति आसन, जिस पर व्यक्ति बैठे उसको आसन कहते हैं। तो आसन ज्यादा एक के बैठने के लिए होता है, छोटा होता है, अथवा कभी कभी समूह में बैठने के लिए भी आसन होता है, और पर्यंक सोने के लिए होता है जो लंबा रहता है, और व्यजन पंखे जहां तक पंखा के विषय में यह जिज्ञासा की जा सकती है, क्या वे स्वयं चालित थे या कोई आदमी चलाता था? अपने आप चालित थे, बिजली द्वारा नहीं और बैटरी द्वारा नहीं, अपने आप स्वाभाविक। और जब व्यक्ति कोई वहां आवे तो उसके आने पर, और वो भी अगर मौसम चाहता है कि पंखा चले तब चलता, नहीं तो नहीं। वैसे तो जरूरत पड़ती ही नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा वो अनुभव करे कि हमको चाहिए फैन पंखा चाहिए, तो अपने आप चालू हो जाता है। बोले सर्वकाल सुखावहम, कहने का तात्पर्य यही है, अगर मान लीजिए पंखा चाहिए तो मिल जाता है, और थोड़ी सी हवा तेज चाहिए तब पंखा चालू होता है। बेड आदि जो उसमें है वो भी कभी विस्तृत होते हैं, कभी संकुचित होते हैं, इस तरह से अपने आप, केवल संकल्प मात्र से, कोई बटन नहीं है, कोई स्विच नहीं है कि ऐसा किया जाए किया जाए किया जाए। इधर भी कुछ ऐसे बेड बनाए जाते हैं जिसको खोल करके विस्तृत किया जाता है, बाद में आसन के रूप में कर दिया जाता है। तो ये तो सब मैकेनिकल बात है, ये कोई बहुत सूक्ष्म नहीं है। लेकिन कर्दम जी के विमान में सब जगह सज्जाए, व्यजन, आसन और कश्यपु सुंदर सुंदर बेड बने हुए थे, और अनेक मंजिला वो भवन, वो विमान था, अनेक मंजिला, बहुत चौड़ा था और बहुत ऊंचा, और सब कुछ रत्नों से बना हुआ था, सर्व रत्न समन्वित। तत्र तत्र विनिक्षिप्त नाना शिल्पोपशोभित महामर्कतस्थल्या जुष्टम विद्रुम वेद भी। और जहां कहां देखने ही योग्य शिल्प कला थी, शिल्प कला मतलब भवन रचने की कला अद्भुत उसमें थी, तो किसी कलाकार के द्वारा वो निर्मित नहीं था, किसी मिस्त्री के द्वारा वो भवन निर्मित नहीं था, लेकिन मैत्रेय जी कहते हैं कि अद्भुत था, देखने पर मुग्ध हो जाता जी, कौन कलाकार बनाया है, कौन कलाकार, उसको सैकड़ों धन्यवाद देना चाहिए। वास्तव में भगवान की भक्ति से बनाया हुआ विमान है, परंतु कह रहे हैं विनिक्षित नाना शिल्पोपशोभित, अनेक प्रकार की शिल्प कलाएं। आज का आदमी ये गर्व कर सकता है कि हम भी शिल्प कला जानते हैं, ये जानते हैं, वो जानते हैं, लेकिन कर्दम जी के विमान के सामने तो कोई शिल्प कला नहीं, केवल ऐसे ऐसे भवन आपने सुना ही है कि इस संसार में खड़ा है भवन, केवल एक विमान जा करके और धराशायी कर दिया, इस तरह के विमान, इस तरह के भवन नहीं है कर्दम जी के, किसी भी तरह से उनको नष्ट नहीं किया जा सकता था, किसी भी उपाय से नष्ट नहीं किया जा सकता था। ऐसी रचना होती है घर की कि वह अस्थायी होता है, सुंदर होता है, और वास्तुकला की दृष्टि से सब कुछ फिट होता है, जिसमें रहने वाले की आयु बढ़े, उसमें कोई रोग न हो, किस द्वार से निकलने पर मनुष्य को धन प्राप्त होता है, किस दिशा में कहाँ किचन होना चाहिए, कहाँ टॉयलेट होना चाहिए। उस भवन में तो टॉयलेट का कोई प्रश्न ही नहीं था क्योंकि इस तरह के व्यक्ति तो जा ही नहीं सकते वहां, जिन्हें अभी इस तरह से शारीरिक आवश्यकताएं बाध्य कर। पहले ही कहा गया कि देवताओं को भी जो भोग सुलभ नहीं है वो वहां थे, तो देवताओं के यहां कोई टॉयलेट नहीं है क्योंकि उनको वो सब ऐसे मनुष्यों जैसा बाध्य नहीं है शौच पेशाब करने के लिए। आज का मनुष्य जो इन परिस्थितियों में बाध्य है, जिसका दिमाग कंडीशन्ड हो गया है, वो सोच ही नहीं सकता किसी भी व्यक्ति के विषय में जो शौच न करता, सोच ही नहीं सकता। जबकि यहीं पर प्रकट है, जैसे वृक्ष हैं, वृक्ष खाते हैं और हम लोगों से ज्यादा खाते हैं, बड़े बड़े वृक्ष को पादप कहते हैं, अपने पैर से पीते हैं, जमीन का रस लेते हैं, तो क्या वृक्ष कहीं टॉयलेट जाते हैं? बताइए, खाने के लिए तो खाते हैं। कोई ये कहे कि अरे भाई तरल पदार्थ खाते हैं तो उनको टॉयलेट की क्या जरूरत है, तो फिर भी प्रस्राव घर तो चाहिए ना लेकिन वो भी नहीं जाते हैं। कितने शुद्ध हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पर ये सब आवश्यकता कि यहां नहाओ और यहां एक केस काटो, नख काटो, ये करो वो करो, ये सब उनको कोई जरूरत है, ब्यूटी पार्लर और ये वो, इनकी कोई जरूरत नहीं वृक्षों को, जी रहे हैं कि नहीं। तो यहां पृथ्वी की अपेक्षा जहां लाखों गुना अधिक स्टैंडर्ड है, वहां की स्थिति दूसरी है, वहां क्या इस प्रकार का शौचालय और ये सब गंदी चीजों क्या जरूरत पड़ेगी, कोई उस तरह की आवश्यकता है नहीं। इस प्रकार से कर्दम जी का विमान सुशोभित था, शिल्प कला उसमें ऐसी थी, सब कुछ का उपाय होता है शास्त्रों में दिया गया, शिखर कैसा होना चाहिए, भवन का अंतिम छत कैसा होना चाहिए, छत के किनारे किनारे रेलिंग कैसी होनी चाहिए, सब कुछ का प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे बस बना लो कुछ भी करो, बहुत शुभ है गुणाव होते हैं भवन, खासकर जो वास्तुकला से बनाए जाते हैं। ये कहा गया है कि मनुष्य को कभी भी शौचालय उत्तर दिशा की तरफ नहीं रखना चाहिए, कि मना किया गया है। गृह का प्रवेश द्वार यदि उत्तर या पूरब हो तो अच्छा है, कहां बैठे लीजर समय में, कहां खाए, क्या करे, कैसे सब। तो यही इसी बात का संकेत कर रहे हैं, शिल्प कला से सुशोभित। शिल्प कला तो वास्तु कला से भिन्न बात है, अद्भुत कारीगरी थी, अद्भुत कौशल था उस भवन में। महामर्कटस्थल्या जितने भी फर्श बने थे उस भवन में, भवन के बाहर चारों तरफ पूरा विमान, तो फर्श जो बना था वो महामरकत मणि का बना हुआ था, साधारण मरकत नहीं, महामरकत, बेस्ट क्वालिटी का मरकत मणि। भगवान श्री कृष्ण के शरीर की उपमा मरकत मणि से दी जाती है, श्यामल, ऐसे मरकत मणि की स्थली बनी हुई थी, जुष्टम विद्रुम वेद भी, और जहां तहां वेदियां बनी हुई थी। वेदी का अर्थ होता है फर्श से थोड़ा ऊपर, जहां लोग कभी कभी बैठ सकें या किसी काम के लिए, ऊंचा, घर के भीतर ही, तो उसको वेदी कहते हैं। वेदी शब्द बहुत प्रसिद्ध है। तो विद्रुम रत्न की वेदियां बनी हुई थी, ऐसा नहीं कहीं से मिट्टी जमा करके और लीपत करके बस वेदी बना दिए, अथवा सीमेंट से और ईट से वेदी बना दी, ऐसा नहीं। विद्रुम वेदी, विद्रुम एक रत्न है। द्वासु विद्रुम देहल्या भातम वज्र कपाटवत। द्वासु और द्वारों में क्या क्या लगा था, द्वार में जो नीचे का द्वार था उसमें विद्रुम मणि ही लगा हुआ था नीचे, ऐसा नहीं कि मार्बल लगा दे थर्ड क्लास का पत्थर विद्रुम सभी द्वारों में, भातम वज्र कपाटवत, और कपाट कैसे लगे थे, किवाड़े, किवाड़े वज्र की लगी हुई थी। कभी कभी हीरा को भी संस्कृत में वज्र कहते, तो हीरे की किवाड़े लगी हुई थी, इतनी मजबूत। और फिर भी ये विमान दुनिया के किसी भी स्थान पर जा सकता था, उड़ सकता था, और बहुत वेग से। कामगम का एक यह भी अर्थ है कि जितना स्पीड की इच्छा होती थी उतना स्पीड से चल सकता था। यदि कर्दम जी को ये इच्छा हो जाए कि यह विमान दिल्ली से अमरावती एक सेकेंड में जाए तो जा सकता था, इतना फास्ट स्पीड था उसका। कामगम का यही अर्थ, तो मन की स्पीड से चलने वाला था, और उसमें कोई पेट्रोल की जरूरत नहीं थी, या कंप्यूटर से रन करेगा, उतरेगा, चढ़ेगा, ये सब कुछ नहीं था, केवल कामगम मन के स्पीड से चलने वाला, मन के अनुसार। शिखरे दिन्द्र नीलेश हेम कुंभेर अधिष्ठितम, तो कपाट बने थे वज्र के देहली विद्रुमणि के, और शिखर जो थे भवनों के लास्ट ऊंचाई, शिखर कहते हैं उसको, चाहे वो मंदिर के आकार के हों या सामान्य घर के आकार के, जितने भी शिखर थे सब इंद्र नीलमणि के बने हुए थे, और उनके उन पर जहां तहां सोने के कलश स्थापित किए गए थे, सोने के कलश। इस तरह से विमान बहुत सुंदर लग रहा था। चक्षुष्मत पद्मरा कर गए वज्र भीति सुनिर्मित, और वज्र की दीवालों में, दीवाल वज्र के बने हुए थे। श्री श्रीधर स्वामी जी एक अर्थ ये भी किए हैं, लगता था कि सचमुच की आंख है, कोई अगर जीव बनाया गया है जहां तहां चित्रकारी कौशल किया, शिल्प कौशल किया गया, तो आंख अगर बनाया गया तो लगता है कि आंख बिल्कुल जीवित व्यक्ति का, किसी पक्षी का या किसी जीव का। उन हीरों की दीवालों में जड़े हुए मन भावने मणिक से ऐसा प्रतीत होता था मानो नेत्रों से युक्त, या उन भवनों में ही ऐसा जगह जगह बनाया गया था लगता था कि वे उनके नेत्र हैं, अथवा जीवों को बना करके उनमें नेत्र फिट किए गए थे, तो बिल्कुल सजीव जैसे लग रहे थे। जुष्टम विचित्र वैतानेर महारहर हेमतोर नहीं, वैताने ही वितान समूह, और सभी घरों में वितान चंदोवे लगाए गए थे, बहुत कीमती। और तोरण जो घर के ऊपर निकला रहता है तोरण, वो सब सोने के लगाए हुए हेमतोर नहीं। सब जगह दिव्यम शब्द लेना चाहिए, इस संसार का सोना नहीं, और कोई भी मणि इस मनुष्य लोक की मणि नहीं, इसको तो देवता लोग मिट्टी समझते हैं। हंस पारा वत ब्रात तत्र तत्र निगुजतम कृत्रिमान मन्य माने स्वान अधिरुह्याधिरुह्य च, जहां तहां हंस पारावत इत्यादि बनाए गए थे, ऐसे सजीव बनाए गए थे कि जो उस भवन पर हंस आते थे, हंस परावत, ये लोग समझते थे कि सचमुच के कोई हंस है, तो उसके सामने वो कूजन करने लगते थे, कूजने लगते थे, ये समझ करके कि कोई जीवित हमारी ही जाति का यह पक्षी है, जो कि दीवालों में बनाए गए थे या सरोवरों के तट पर बनाए गए थे, वास्तव में मणियों के बनाए हुए थे, जीवित नहीं थे, लेकिन जो जीवित हंस परावत कुकुट आदि थे, ये सब समझते थे कि हमारी जाति के हैं, और वहां कूजने लगते थे। और ऐसी व्यवस्था थी कि अगर वो कूज रहे हैं, बोली बोल रहे हैं, तो उधर से भी आवाज टकरा करके इस तरह से आती थी कि इनको भ्रम होता था कि ये हमारी जाति का है और जीवित है, तो बहुत देर तक कूजते रहते थे देख देख करके। इस प्रकार का अज्ञान पक्षियों में स्वाभाविक है, एक बार मैं देखा वृंदावन में एक घर में एक दर्पण रखा हुआ था, एक बार भूल से वो दर्पण गिर गया, फूट गया था, तो नीचे रख दिया गया ऐसे दर्पण। मैं देखा एक पक्षी हमेशा आता था वहां, छोटा सा पक्षी, और उसने ऐसे झांक करके देखता था तो खटखट खटखट शीशे पर मारा करता। उसको ये ध्यान आ रहा था कि कोई पक्षी है और जो हमसे लड़ना चाहता है, और उसके प्रतिबिंब के अलावा वहां कुछ नहीं था। लेकिन बार बार मैं देखता था, हमने सोचा कि इसका तो चोंच खराब हो जाएगा, तो मैंने बाद में उल्टा रख दिया उसको, तब बेचारा सुख से रहने लगा, अपना प्रतिबिंब दिखाई दे देता था। लेकिन जब वैसे रख देने पर फिर आकर के वो अपने चोंच से मारता रहता था, जो शीशे में अपना प्रतिबिंब पहचान में नहीं आ रहा है कि मैं ही हूं, यहां वास्तव में कुछ नहीं। इस तरह के आदमी भी बहुत मूर्ख होते हैं, तो किसी से द्रोह कर रहे हैं, किसी से द्वेष करते हैं, तो ये नहीं जानते हैं कि मैं अपने से ही द्वेष कर रहा है। बिल्कुल अपना ही स्वरूप है वह व्यक्ति दूसरा। ऐसा कहा जाता है कि महाभागवत लोग अपने को ही सब जगह देखते हैं, अर्थात भगवान को सब जगह देखते हैं, सब में भगवान है। निज प्रभु मैं देख ही जगत के ऐसन कर रहे हैं विरोध, तो सब में जब कृष्ण है तो उससे द्रोह कर रहे हैं, तो कृष्ण से द्रोह कर रहे हैं। मामात्म पर देह सुप्रद्विसंतो व्यसूये का, गीता में भगवान कहते हैं कि अगर कोई दूसरे से द्वेष करता है तो वास्तव में वो मुझसे ही द्वेष कर रहा है, क्योंकि मैं सबके शरीर में हूं, द्वेष करने वाले के शरीर में भी हूं और जिससे द्वेष कर रहा है उसके साथ भी। पक्षियों का वहां पर तो युद्ध नहीं होता था, वास्तव में कूजते थे करदम जी के भवन में, बहुत प्रसन्न होते थे, इस प्रकार की कलाकारिता थी। बिहार स्थान विश्राम संवेश प्रांगण आज रही जथोपजो सम रचितैर विस्मापन मिवात्मन। विहार स्थान, जगह जगह विहार करने के लिए, क्रीड़ा के लिए स्थान बने हुए थे, मतलब पूरा नगर ही बना हुआ था उस विमान पर। विहार स्थान जैसे खेलने के स्थान, जैसे इधर हम लोग देखते हैं कहीं कहीं फुटबॉल खेलने के स्थान होते हैं, कहीं किसी क्रीड़ा के लिए होते हैं, किसी क्रीड़ा के लिए होते हैं, तो बहुत से विहार स्थान थे। और विश्राम, विश्राम कर थकावट दूर करने के लिए, श्रम दूर करने के लिए, कहीं कहीं आराम करने के लिए भवन थे, स्थान थे। और कहीं संवेश, संवेश का अर्थ है सोने के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए कहीं कहीं स्थान बने हैं। प्रांगण, प्रांगण का अर्थ है घर के बाहर, आंगन घर के बाहर। और अजीर, अजीर का अर्थ होता है जो चहर दीवारी के बाहर स्थान हो, आंगन। जथोपजो संरचित है, सब प्रकार का सुख देने वाले थे, सुविधा के अनुसार सब दिए गए, जैसे सुख मिले ऐसे रचे गए थे। विस्मापन विवात्मन, और इन सबको देख करके करदम जी को भी विस्मय हो रहा था, करदम जी भी आश्चर्य में पड़ गए ये सब देख करके, बहुत बड़ा विस्मय हो रहा था कि सब अद्भुत चीजें। तो इस प्रकार 9 श्लोकों में वर्णन किया गया करदम जी के विमान का। इद्री गृहम तत् पश्यन्ति नातिप्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञः प्रावोचत करदमः स्वयं। जब देवहूति ने ऐसे भवन को देखा, करदम जी ने रचा था, कहा था कि तुम देखो मैं तुमको ये भोग दे रहा, इस प्रकार के सुंदर अद्भुत भवन को देखकर भी देवहूति का चित्त पूरा पूरा प्रसन्न नहीं हो पाया, क्योंकि बेचारी का शरीर मलिन था, क्षीण था, और उसकी कोई सेविका नहीं थी, सेवा करने वाली नहीं थी, तो इस कारण से उसे कोई प्रसन्नता नहीं हुई। यदि मान लीजिए भवन बहुत अच्छा है और सब कुछ प्रणाली अच्छी है और शरीर में कोई रोग हो गया है तो व्यक्ति क्या भोगेगा, तो वह प्रसन्न नहीं हुआ, न अति प्रीतेन चेतसा। तो कर्दन जी जो सभी जीवों के हृदय की बात जानने में समर्थ थे, सर्वभूताशया विज्ञ, सभी जीवों के आशय को समझ सकते थे, तो देवहूति के आशय को तुरंत समझ गए और स्वयं ही बोले, देवहूति से कहे, वो समझ गए देवहूति की दुविधा कि ऐसे सुंदर भवन में ये प्रवेश करना नहीं चाहती है, अपने शरीर की दुर्वस्था देख करके ये जैसे तैसे उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तब कर्दम जी कहे, निमज्जास्मिन् हृदयभीरु विमानमिदमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थं आशिषं व्यापकं निर्णाम। हे भीरु, हे संकोची स्वभाव वाली, मैं समझ रहा हूं तुमको ये विमान अच्छा नहीं लग रहा है, तो सुनो, तुम्हें इस बिंदु सरोवर में स्नान करो। कर्दम जी ने कहा, वह बिंदु सरोवर यही है, तुम यहां स्नान करो। निमज्ज इस तीर्थ में, बिंदु सरोवर में तुम स्नान करो, और इदम विमानम आरुह आरुरोह, इस विमान पर चढ़ो, इसमें स्नान कर लो और तब चढ़ो, ऐसा कहा। स्नान करने में ही देवहूति का शरीर बदल जाएगा, पूर्ण सुंदरी हो जाएगी। कहने का मतलब यह था कि इस सरोवर में जो जल है, चूंकि भगवान के आंखों से निःसृत जल है, इसलिए इसका बहुत प्रभाव है। वास्तविकता यह है कि सरस्वती नदी के हृदय में एक बार तपस्या कर रहे थे वहां पर कर्दम जी, तो कर्दम जी तपस्या करते करते, भगवान का जप करते करते बिल्कुल क्षीण हो गए थे, अस्थि मात्र शरीर में रह गया था। तो भगवान अपने भक्त की दशा को देख करके रो दिए, गरुण जी पर चढ़े चढ़े भगवान रो दिए, स्नेह के आंसू आ गए थे। तो भगवान के आंखों से वो आंसू टपके नीचे, तो सरस्वती के उस हृदय में पड़े थे, दह में पड़े थे, इसीलिए उस सरोवर का नाम पड़ा बिंदु सरोवर। बिंदु मतलब अश्रु बिंदु। तो भगवान के आंखों से जो जल गिरे थे, उसके कारण यह बिंदु सरोवर बहुत पवित्र हो गया है। और पवित्रता के साथ साथ निर्णाम आशिषाम यापकम, मनुष्यों के सब प्रकार के मनोरथ को पूरा करने वाला बन गया है। इदम शुक्ल कृतम, यह भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। शुक्ल जो सतयुग के जुगावतार हैं भगवान, शुक्ल कृतम तीर्थम, यह तीर्थ है भगवान विष्णु के द्वारा बनाया हुआ है। कर्दम जी कहते हैं कि तुम इसमें स्नान करो और देखो स्नान करने से ही क्या हो जाता है। वो देख रहे थे कि शरीर क्षीण होने से, मलिन होने से, कोई सेविका नहीं होने से ये दुखी है, तो यही उनके कहने का अर्थ था कि जरा स्नान करो, स्नान करो तो देखो तुमको कितनी सेविकाएं मिलती हैं और तुम्हारा शरीर कितना सुंदर हो जाता है। बोला स्नान करो, तीर्थ में स्नान जरूर करना चाहिए। तीर्थ के जल में और सामान्य नल आदि के जल में बहुत अंतर होता है। किसी तरह देह साफ हो जाता है लेकिन मनुष्य का मन पवित्र नहीं हो पाता है। तो तीर्थ का जल तो शरीर साफ करता ही है, मन को भी शुद्ध कर देता है। भगवान का डायरेक्ट संबंध होता है उस जल से। कर्दम जी स्वयं कह रहे हैं कि इदम शुक्ल कृतम तीर्थम आशिषाम प्रापकम निर्णाम, निर्णाम आशिषाम यापकम। मनुष्य के जितने भी आशीष हैं, मनोरथ हैं, उच्च से उच्च, सारे मनोरथों को यह तीर्थ पूरा कर देता है। कई प्रकार के मनोरथ मनुष्यों के मन में रहते हैं। कोई कोई चाहता है हमें कोई उत्कृष्ट सर्विस मिले, कोई कन्या चाहती है कि हमारा सुंदर वर से विवाह हो जाए, सब समस्त शुभ लक्षणों से युक्त वर से मेरा विवाह हो, कोई रोगी चाहता है कि मेरा रोग दूर हो जाए, मैं स्वास्थ्य लाभ करूं, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कुछ बच्चे चाहते हैं कि परीक्षा में मैं बहुत अच्छा से पास हो जाऊं, तो उनको बिंदु सरोवर में नहाना चाहिए। इसका अर्थ है नहीं कि क्यों पढ़े न और क्यों नहाया करे। तो नहाने से उसका मनोरथ पूरा होगा, जैसे देवहूति का पूरा हुआ। कर्दम जी कहते इसमें स्नान करो, ये भगवान का तीर्थ है, वैष्णव तीर्थ है और मनुष्यों के इच्छाओं को पूरा करता है। आज भी लाखों लाखों लोग स्नान करते हैं तीर्थों में, गंगा जी में स्नान करते हुए देखा जाता है, हिमालय से लेकर के और समुद्र पर्यंत दोनों तटों पर लाखों लोग रोज स्नान करते हैं, कई लाख करते हैं स्नान। जमुना जी में स्नान होता है और भी कई सरोवर हैं जैसे राधा कुंड वगैरह, सब लोग स्नान करते रहते हैं। केवल देह को ही शुद्ध करने के लिए नहीं, वास्तव में आत्मा शुद्ध होता है, मन शुद्ध हो जाता है तीर्थ में स्नान करने से। कर्दम जी अपनी पत्नी को स्नान करने के लिए कह रहे हैं और इसमें स्नान करके इस विमान पर चढ़ो। सा तद भर्तु समादाय वचः कुवलय क्षणा सरजुन विभ्रति वासो वेण भूतांश्च मूर्धजान। उस समय देवहूति जो साड़ी पहनी थी उस सरजम उसमें धूल लग गई थी, गंदी हो गई थी साड़ी, और मूर्धजान उसके जो केश थे बाल बेड़ी भूता बेड़ी बन गई थी, जटा बन गई थी। कभी कोई नहाने का उसको अवसर अच्छे से नहीं मिला था, न नहाने के लिए कोई साबुन या कुछ भी का प्रबंध किए थे कर्दम जी, कुछ नहीं किए थे। कोई चीज नहीं, न तेल उबटन कुछ नहीं। इस तरह से जब तपस्या की जाती है तब व्यक्ति को सिद्धि मिलती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। नहीं, हमेशा शरीर का ही श्रृंगार करता रहे, देखता रहे, तो क्या भगवान को प्रसन्न करेगा। देणी भूता समूर्ध जान, सिर के केश सब जटाएं बन गई थी, साड़ी गंदी हो गई थी, उसकी आंखें कमल के समान थी, फिर भी देहूति बहुत सुंदरी थी। तो भर्तु वचः समादाय, अपने भर्तार अपने स्वामी कर्दम जी के वचन को स्वीकार करके और वह स्नान की। कैसा उसका शरीर हो गया था, अंगम चमल पंकेन संचन्नम सबलस्तनम आवेश सरस्वत सरसि जलाशय। पहले देखने लगे अपने को, इसीलिए मैत्रेय जी देवहूति के स्नान करने से पहले जो उसकी दशा थी उसको यहां कह रहे हैं, क्योंकि स्नान के बाद वो बिल्कुल बदल जाएगी। तो स्नान के पूर्व कैसा था, अंगम चमल पंकेन संचन्नम, उसके सारे जो शरीर था वो मलपंक से संचन्न थे। संचन्न का अर्थ है कि जहां तहां शरीर में मैल बैठ गई थी। कभी कभी देखा जाता है बच्चों के पैर में मल जम जाता है, तो माता पिता उसे छुड़ाते हैं साबुन लगा लगा करके। जैसे उधर गांव में तो उस मकर संक्रांति के दिन कितने बच्चों को ऐसे स्नान कराया जाता है, नहीं तो शरीर पर धूली जमी रहती है, गंदगी रहती है। तो देवहूति के सारे अंग अंगम च मलपंक न संचन्नम सबलस्तनम, और उसके दोनों अस्तन फीके हो गए थे। कभी इन पर श्रृंगार नहीं किया गया, कोई प्रसन्नता नहीं, कुछ नहीं। स्त्री के लिए स्तनों की सुंदरता भी एक बहुत महत्वपूर्ण सुंदरता मानी जाती है। मैत्रेय जी ये सब वर्णन कर रहे हैं, तो स्तन फीके थे, सारे शरीर पर मल पंक जमे थे, साड़ी गंदी थी, सिर में जटाएं बन गई थी, ये रूप था पहले स्नान से पहले। और पति की बात को मान करके सरस्वती के उस हृदय में जिसमें बहुत ही पूर्ण जल था, कल्याणकारी जल अथवा बहुत सुंदर जीव रहते थे जल पक्षी वगैरह, उसमें वो प्रवेश की मतलब डुबकी लगाई नीचे पानी के अंदर, तो क्या देखती है, सा अंतः सरसि भेष्मस्था सतानि दश कन्या कहा सर्वः किशोर वयसो ददर्श पलगंधय। पानी में डुबकी लगाने पर देवहूति ने देखा अंतः सरसी उस सरोवर के भीतर अंतः सरसी बेस्मस्ता अंतः सरोवर सरोवर के अंतर में एक घर है घर है। विमान को उसने वहां देखा, पहले तो घर देखा तो उस घर में स्थित 1000 कन्याओं को देखा उसने। किसी किसी को ऐसा लगेगा कि ऐसे ही कथा कही जा रही है, कुछ हुआ नहीं था वास्तव में। आजकल के आदमी ऐसे, कल मैं आ रहा था यहां पर तो एक व्यक्ति मेरे सीट के बगल में बैठा था, पुरी का था, जगन्नाथपुरी का आदमी। तो बातचीत होते 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 कहता है कि आप इस्कान के हैं क्या? मैंने कहा कि हाँ। तो आप लोगों का जो फेथ है वो अन्य लोगों से अलग जान पड़ता है। मैंने कहा हम लोगों का फेथ नहीं है, हम लोगों का साइंस है, हम लोग केवल फेथ के अनुसार नहीं चलते, यह साइंस है, शास्त्र में लिखा गया है। शास्त्र में भगवान के नाम जपने की बात कही गई है, आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो कहता है ये शास्त्र क्या चीज है, शास्त्र तो हम भी लिख सकते हैं। शास्त्र तो हम भी लिख सकते हैं, इसमें कौन बड़ी बात। तो मैं सोचा कि ये जगन्नाथपुरी का आदमी है, ये शास्त्र लिखने लगा। फिर मैंने बात नहीं किया, ऐसे हमको थोड़ी सी उदासीनता हो, घृणा हो गई, कैसे ऐसे बैठ गया यहां सीट पर। वो जो इतना समझ ही नहीं सकता कि शास्त्र क्या है, भगवान क्या है, उसे क्या बात करना था। तो यहां पर मैत्रेय जी कथा कह रहे हैं, विदुर जी श्रोता है, जिनके घर में भगवान बिना बुलाए चले गए थे हस्तिनापुर में। साक्षात जमराज जी हैं, मनुष्य लोक में जन्म हुआ है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं मैत्रेय जी से हरिद्वार में। क्या मैत्रेय जी ऐसी झूठी कथा कहेंगे? आप जरा विचार कीजिए। और श्रोता विदुर जी यही सब सुनने के लिए घर छोड़े थे, झूठी कथा। अगर कहना ही होता तो कहते कि 10,000 कन्याएं थी, चाहे 10 करोड़ थी। मैत्रेय जी कहते हैं 1,000, सतानी 10 सौ कन्याओं को देखा देवती ने। ये बिल्कुल फैक्ट है, सत्य है। देख कैसी कन्याएं, सर्वा किशोर वयस, सभी कन्याएं किशोर वर्ष, किशोर अवस्था की थी। किशोर अवस्था मतलब 15-16 वर्ष की थी कन्याएं सब। ददर्श उत्पल गंध, और उन किशोरियों के शरीर से उत्पल जाति के कमल की गंध आ रही थी, सबके शरीर से सुगंध निकल रहा था। वो कन्याएं ऐसी थी, खूब सुंदर सुगंध निकल रहा था। देहूति ने अनुभव किया कि सबसे कमल की गंध निकल रही, कमल की सुगंध आ रही। एक तो पूर्ण यौवन में थी, किशोर अवस्था में परम सुंदरी, स्त्री का सौंदर्य वास्तव में 16 वर्ष की उम्र में सबसे अधिक होता है। तो इस उम्र की सारी लड़कियां थी, और बहुत सुंदरी, बहुत सुकुमार, कमल की गंध थी और कमल जैसी ही सुंदरी थी। तान दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोचु प्राञ्जलय स्त्रिय वयम कर्म करिस्तुभ्यं साधिनः करवाम की। तो देहूति को देखते ही वे सारी कन्याएं उठ करके खड़ी हो गई। इसका अर्थ है कि पहले वो बैठी थी, सेवा की सारी सामग्रियां लेकर के, कोई चामर, कोई व्यजन, कोई सुगंधित तेल जो सिर में लगाया जाता है, कोई कपड़ा, कोई माला, कोई कुछ कुछ, इस तरह से कुछ न कुछ लेकर के वो बैठी थी। और देहूति को देखते ही वे सब उठ करके खड़ी हो गई, खड़ी होकर के उसके पास हाथ जोड़ करके, प्राञ्जलय हाथ जोड़ करके वो किशोरी कन्याएं कहने लगी, वयम कर्म करिस्तुभ्यम, हम आपकी परिचारिकाएं हैं, हम आपकी दासियां हैं, साधिनः करवाम किम, आप आज्ञा दीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। देखिए चमत्कार योग का, भक्ति का, ये है शक्ति कर्दम जी की। अब ये प्रश्न किया जैसे कहां से कन्याएं आ गईं, कहां से आ गईं, कहीं से नहीं आई थी, योग शक्ति के द्वारा उन्हें तुरंत ऐसा शरीर दे दिया गया जीवों को, तुरंत कर सकते हैं। पहले कहा गया ना कि ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा बढ़कर के शक्ति कर्दम जी में, तत्काल 1000 कन्याओं को इस तरह से जन्म दे देना, प्रकट कर देना, वो बिना गर्भवास के, बिना प्रसव के इस तरह से करना, ये है कर्दम जी की शक्ति, भगवान की भक्ति का प्रभाव। तो ये कहे वयम कर्म करिष्टुभ्यम साधिन कर्वाम किम, हम आपकी कर्म करी हैं, आपकी सेवा करने वाली हैं, परिचारिकाएं हैं, आप हमें आदेश दीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। तब देवहूति जी ने संकेत किया होगा कि मैं स्नान करना चाहती हूं। वो स्नान नहीं था, जब पानी में डुबकी लगाई तो देखी भवन और सब किशोरियां, तो पानी के अंदर होते हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वे लोग भी पानी से भींगी थी या देहूति भी पानी से भींगी थी, नहीं, पानी एक आवरण जैसा था, उधर भीतर देखा तो पूरा भवन और वो बच्चियां थी, तो ये सब देखा, तो स्नान करूंगी ऐसा संकेत पाकर के स्नानेन ताम महारेण स्नापित्वा मनस्विनीम दुकूले निर्मले नूतने दद्यु रसई च मानव। तो उन कन्याओं ने देहूति को स्नान कराना चालू किया। अब देखिए श्लोक क्या कह रहा है, स्नानेन ताम स्नापित्वा, स्नान से स्नान कराकर, यहां ये स्नान से तात्पर्य है उबटन लगाना, और भी जल से स्नान के पहले कई स्नान होता है, भागवत में लिखा गया है कलयुग में लोग केवल जल से स्नान करेंगे, स्नान में वो प्रसादनम, और जल से नहा लेंगे तो इसी को बहुत बड़ा स्नान मानेंगे, लेकिन वास्तव में स्नान होता है उबटन लगाना और तेल लगाना शरीर में, विविध प्रकार के तेल होते हैं, मालिश करना, और इसके बाद तब जल से स्नान कराया जाता है, जल से लास्ट स्नान होता है, लेकिन कलयुग में लोग जल से स्नान कर लेंगे इसी को बहुत प्रसादनम मानेंगे, ये बहुत हो गया, बहुत हो गया, और कुछ लोग तो केवल हवा से नहा लेते हैं उसी को काफी मानते हैं वो तो पानी डालना ही नहीं चाहते अपने देह पर, जैसे गाय बैल नहाना नहीं चाहते हैं, उनको जबरदस्ती खींच करके ले जाया जाता है सरोवर में नदी में, तब नहाते हैं, नहीं तो अपने से तो नहा नहीं सकते। इस तरह से कुछ आदमी होते हैं, वो नहाना उनके जीवन का कोई आनंद नहीं, वो समझते हैं कि पनिशमेंट भोगा जा रहा है स्नान इस तरह से कराया जाता है। यहां पर लिखा गया स्नानेन स्नापयित्वा, स्नान से स्नान कराई, तो यहां पर स्नान का अर्थ कुछ दूसरा है, स्नान करने के पहले कई प्रकार से शरीर को मालिश करना, तेल लगाना, इसको स्नान कहते, तो स्नान से स्नान कराया था, मतलब मालिश की, तेल लगाए वगैरह सब कुछ, तब स्नान कराए, स्नान करा करके उस मनुष्य ने धैर्य शालिनी स्थिति को दुकूले निर्मले नूतने तदु रसे च मानव, इसके बाद दो नए वस्त्र दिए, दुकूले, एक नीचे पहनने के लिए एक ओढ़ने के लिए, इसको लहंगा और चुनरी कहते हैं, ब्रज के तरफ ऐसा पोशाक चलता, तो दिया निर्मल वस्त्र बिल्कुल नया, भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांसि द्युमन्ति च अन्नम सर्वगुणोपेतम पानम चैवामृतासम, खूब अच्छा से स्नान करा दी, वस्त्र दी, और वस्त्र के बाद आभूषण, सब प्रकार के आभूषण पहनाए ये लोग, बहुत मूल्यवान, और वरीयांसि द्युमन्ति च, आभूषण कैसे पहनाई, जो चमक रहे थे, चमक रहे थे सब आभूषण, और वरीयांसि जिनको देहूति पसंद करती थी, वही कहती थी ये पहनाओ ये पहनाओ ये दो ये दो, जो अच्छा लगता था इसको वरियांसी कहते। और अन्नम सर्वगुणोपेतम, अन्न इसके बाद भोजन कराई, सब कुछ के विषय में समझना चाहिए, भगवान की कृपा है शक्ति है सब कुछ मिलता जा रहा है। अन्नम सर्वगुणोपेतम, सर्व समस्त गुणों से युक्त भोजन, यह अन्न का अर्थ है भोजन, स्वादिष्ट बिल्कुल ताजा और शरीर की शक्ति बढ़ाने वाला ऐसा ऐसा भोजन जो एक टाइम खाया जाए तो शरीर युवक हो जाएगा, ऐसे ऐसे भोजन की वस्तुएं थी उसमें। वो युवक तो थी ही, ज्योति तो थी ही, लेकिन क्षीण शरीर हो गया था, वो खाते ही बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। पानम चैवा मृतासवम, और पान खान पान, तो पान का अर्थ पीने लायक वस्तु उन्होंने दिया, वो तो अमृतम बिल्कुल सुस्वादु परम स्वादिष्ट, और ऐसा जो मादक था, मादक का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि शराब दे दिया गया, यह मादक का अर्थ है सांसारिक दुखों की विस्मृति करा देने वाला आसव पान। एक तो स्वाद बहुत अच्छा और दूसरा और सब दुख भूल जाता है व्यक्ति, सुन आसव कहा। तो इस प्रकार से उन परिचारिकाओं ने देवहूति को खिलाया पिलाया, खिला पिला करके वस्त्र पहनाकर पहले, फिर श्रृंगार करके अलंकृत करके, उसके बाद खिलाया पिलाया, उसमें भोजन के जो भी गुण हैं उन गुणों से युक्त जो भी प्रकार हैं भोजन के और पीने के, इसके बाद खाने पीने के बाद मुखवास देना पान देना, ये सब इसमें सम्मिलित है, सब समझ लेना चाहिए। अथा दर्शे स्वम आत्मानम स्रग्विणम बिरजाम्बरम बिरजम कृत स्वस्तैनम कन्या भीर बहुमानितम। इसके बाद दर्पण दिया उन परिचारिकाओं ने कि आप अपने को देखिए, तो बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ था, शरीर बिल्कुल ठीक हो गया था, तो अपने को देवहूति ने दर्पण में देखा, दर्पण पूरा लंबा दर्पण था जिसमें वो नख से सिख तक अपने को देख सकती थी पूरा, तो देखी, किस रूप में देखी, स्रग्विणम बिरजाम्बरम बिरजम कृत स्वस्तैनम, चार विशेषता वर्णन कर रहे हैं। स्रग्विणव माला लगाई थी, बिरजाम्बरम बहुत सुंदर साड़ी पहनी थी, बहुत सुंदर वस्त्र पहनी थी निर्मल, और वीरजम शरीर बिल्कुल वीरज हो चुका था, शरीर में कहीं कोई गंदगी नहीं रह गई थी, चमचम चमक रहा था। कृत स्वस्तैनम और स्वस्तैनम कुमकुम तिलक आदि की थी, जैसे सिंदूर धारण करना कुमकुम बेंदी लगाना और भी जो अलंकार हैं, और इस तरह कन्या भी बहुमानितम उन कन्याओं के द्वारा सम्मानित थी, उन्होंने उसको सजाया था सब तरह से। स्नातम कृत शिरस्नानम, तो यह देख करके तब फिर शिर स्नान की, शिर स्नान का अर्थ है कि उन दासियों ने उसके सिर का संस्कार किया, केश का संस्कार किया, ये सब होने के बाद केश का अलग से श्रृंगार की, उसमें तेल लगा करके एक एक जटा को छुड़ाई होंगी, कंघी की होंगी, इस तरह से इसको शिर स्नान कहा गया। सिर स्नान का वास्तविक अर्थ होता है कि स्त्रियां जब सिर को भी भिंगोती हैं पूरा स्नान करती हैं तो उसको सिर स्नान कहते हैं, लेकिन यह स्नान तो पहले ही हो ही चुका है उसका, यहां पर सिर स्नान का अर्थ है कि सिर को स्नान कराया, केशों का संस्कार किया गया। सर्वाभरण भूषितम, और सब प्रकार के आभूषण से आभूषित थी, निष्कग्रीवम बलैनम, कंठाभरण हंसली धारण की थी, और बलैनम बलय हाथ में कंकड़ धारण की थी, कुजत कांचन नूपुरम, और पैर में सोने का पायजेब रुंझन रुंझन बज रहा था। श्रोणो रध्यस्तया कांच्या कांच्या बहुरत्नया कांचन्या बहुरत्नया, और उसके कमर में वस्त्र के ऊपर कांची लगी हुई थी, सोने की किंकड़ी, बहु रत्न आया, उसमें बहुत प्रकार के रत्न लगे हुए थे, बहुत सुंदर आवाज कर रही थी। हारेण च महारेण रुचके न च भूषितम, हार बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत कीमती हार पहनाया गया उसको, और रुचके न च भूषितम, रुचक, रुचक कंठाभरण को भी कहते हैं, परंतु यहां रुचक का अर्थ है मंगल द्रव्य से युक्त, कुमकुम आदि से युक्त। शुद्धता सुभ्रुवा लक्षण स्निग्धा पांगे ने चक्षुषा, और उसके दांत बहुत सुंदर थे, सुंदर भाव है और सुंदर आंख। ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की मां का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए मैत्रेय जी देहूति के आंखों को देख रहे हैं, कथा कहने में दांत को देख रहे हैं, सुंदर भाव को देख रहे हैं। कोई भी यहां पर कुत्सित भावना के लिए कोई अवकाश नहीं है, देहूति परम सुंदरी है, तो उसके दांत का, भौंह का और आंख का वर्णन किया जा रहा है। श्रीपद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि सब एक वचन है, ये जातव एक वचन, आंखों की जाति के कारण एक कहते हैं, नहीं तो दो दो कहते हैं। सुंदर दांत से, सुंदर भाव से, सुंदर आंख से, बहुत सुंदर लग रही थी। आंखों का वर्णन करते हैं, सुलक्षण स्निग्धा पांगेन, बहुत मनोहर सुंदर आंख कैसी थी, बहुत सुंदर, और सुंदर तथा स्निग्ध नेत्र प्रांत थे, आंखों के आसपास के जो क्षेत्र उनको अपांग कहते हैं या चितवन को कहते हैं, देखना बहुत सुंदर। पद्म कोश स्पृधा, आंखों की तुलना कर रहे हैं कि पद्म कोश, कमल का जो गर्भ होता है, भीतर का भाग होता है, इसको पद्म कोश कहते हैं। जितना सुंदर वो होता है, देखने में लगता है, उस तरह की सुंदर आंखें थी देवहूति की। नीलई अलकैश चल सन्मुख, और नीली नीली अलकों से, बालों से युक्त मुख बहुत अच्छा लग रहा था। मुख का वर्णन कर रहे हैं, बताइए एक परम सुंदरी स्त्री के रूप मुख का ऐसा वर्णन करना एक विरक्त सन्यासी के लिए क्या यह ठीक है? कि वास्तव में यहां पर भगवान की जननी, भगवान की मां का वर्णन किया जा रहा है, बहुत पवित्र भाव से, सुंदर दांत से, सुंदर भाव से, कमल कोश स्पृधि नेत्र से और नीली नीली अलकों से देवहूति का मुख बहुत सुंदर लग रहा था। यह है ध्यान। वास्तव में ऐसा करने से मन के कषाय दूर हो जाते हैं, मन में जो दुर्वासना होती है वो भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से जब देवहूति ने अपने को देखा तो उस समय और उसके मन में इच्छा हुई अपने पति के साथ होने की, जो उसने स्मरण किया अपने पति का इस दशा में। पहले तो शरीर क्षीण था, स्तन फीके थे और साड़ी ठीक नहीं थी, कपड़ा ठीक नहीं था, तो कभी वो सोचती भी नहीं थी करदम जी के साथ होने के लिए, संग करने के लिए, परंतु अब स्मरण आया अपने पति का, इस तरह से मिलना चाहिए। जेम ही मिलने की कोशिश की, उनकी याद की, उसी समय वो देवहूति देखी कि उन कन्याओं के साथ करदम जी के पास ही वो है। जल में डुबकी लगाने के पहले करदम जी बाहर थे, कहे कि इसमें स्नान करो, और अब जल के भीतर ही जब उसने स्मरण किया तो देखती जब ही स्मरण किया उनके पास हो जाए तब तक तो तुरंत उपस्थित हो गए। अब उसको फोन नहीं करना पड़ा कि आप जरा यहां आइए या मुझको बुलाइए, ये कीजिए वो कीजिए। जब संकल्प किया कि मैं करदम जी के साथ हूं तो उस समय देखी, जदा सस्मार ऋषभम ऋषिणम दैतम पतिम तत्र चास्ते सह स्त्री भी जत्रास्ते स प्रजापति। उसने देखा कि मैं उन कर्मकारियों के साथ, दासियों के साथ वही हूं जहां हमारे पति। ये बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ देखकर। करदम जी कैसे हैं? ऋषिणाम ऋषभम, ऋषियों के भी ऋषि हैं, सबसे श्रेष्ठ ऋषि, सबसे बड़े भक्त दैतम पति, अपने प्रिय पति को उसने देखा कि मैं उनके पास ही हूं। भर्तु पुरस्ताद आत्मानम स्त्री सहस्रवृतम तदा निशाम्य तद योग गतिम संशयम प्रत्यपद्यतम। तो अकस्मात स्मरण करने मात्र से वो देखी कि मैं अपने पति के साथ हूं और हजार स्त्रियों से घिरी हुई, तो अपने पति की इस योग शक्ति को देख करके देवहूति को बहुत बड़ा संशय हुआ। संशय का अर्थ है यहां विस्मय, संशय का डाउट नहीं समझना चाहिए, यहां संशय का अर्थ विस्मय। पहले तो सुना था, जानती भी थी इनकी शक्ति है, लेकिन ये तत्काल ये सब देख करके हजार स्त्रियां उत्पन्न हो जाना, हजार कन्याएं, और तुरंत पति के साथ हो जाना और अपना शरीर एकदम सुंदर हो जाना, लगातार कई कई योग शक्ति देख करके उसको बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। सताम कृतमल स्नानाम विभ्राजंतीम पूर्ववत आत्मनो विभ्रतिम रूपम संबित रुचिरस्तनीम विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानाम सुवाससम जात भावो विमानम तद आरोह्य दमित्रहन। तो इस प्रकार से वो स्नान कर चुकी थी खूब अच्छी तरह से, और विभ्राजंती अपूर्ववत आत्मनो विभ्रतिम रूपम संबित रुचिरस्तनी देखा कर्दम जी ने। पहले आदर्श में, दर्पण में देहूति ने अपने को देखा था, अब कर्दम जी अपनी पत्नी को देख रहे हैं ध्यान से इस परिवर्तन के बाद। सताम कृतमल स्नान, उन्होंने देखा कि यह स्नान कर चुकी है खूब अच्छी तरह से, शीर स्नान भी, और बहुत सुंदरी लग रही है। आत्मनो विभ्रति रूपम, जितना विवाह के समय सुंदरी थी, अपने पिता के यहां से आई थी आश्रम पर, तो वैसी सुंदरी हो गई थी, बिल्कुल युवती किशोर अवस्था के, बल्कि पहले जितना सुंदर थी उससे भी अपूर्व सुंदरी बन गई। यहां अपूर्व का अर्थ होता है अतुल्य, ऐसी सुंदरी पहले नहीं थी जितनी सुंदरी बन गई। और ये भी उन्होंने देखा कि हजार विद्याधरियों के साथ, देवियों के साथ ये सेव्यमान है, सुंदर साड़ी है। तो अपने पत्नी की सुंदरता को देखकर कर्दम जी के मन में उसके प्रति बहुत प्रेम उत्पन्न हुआ। आपने सुना था पहले दया उत्पन्न हुई थी, कल शाम को कथा कही जा रही थी, अपने पत्नी की दशा को देखकर दया उत्पन्न हो गई सेवा देखकर, और अब उसके सौंदर्य को देख करके उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। यह प्रेम का अर्थ है कि इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए, इसके साथ होना चाहिए, यह अर्थ है। ये नहीं समझना चाहिए कि कर्दम जी काम वासना के अधीन हो गए, नहीं, ये आगे का श्लोक बताएगा। अब आकृष्ट हुए अपने पत्नी के प्रति, तो सुखदेव मैत्रेय जी कहते हैं, तस्मिन् अलुप्त महिमा प्रियया अनुरक्त विद्याधरी भिरुपचीर्ण बपुर्भिमाने बभ्राज उत्कच कुमुद गणवान पिच्य ताराभिरावृति वो डुपतीर्णभस्थ। तस्मिन विमाने, उस विमान में अपनी प्रिया के साथ चढ़े कर्दम जी और विद्याधरी आदि सब, हजार विद्याधरियों के साथ, और सारी सामग्री सब कुछ परफर्नालिया सब कुछ। प्रियया तस्मिन विमाने बभ्राज, अपनी प्रिया के साथ, देवहूति के साथ उस विमान में बहुत सुंदर लग रहे थे कर्दम जी, बहुत सुंदर लग रहे थे बभ्राज। कैसे सुंदर लग रहे थे, जैसे लगता था कि आकाश में चंद्रमा ताराओं के साथ, अच्छा कुमुदिनियों के साथ हो, ऐसा सुंदर लग रहा है। रात में जब चंद्रमा उगता है तो चंद्रमा के उगने से ताराएं उतनी सुंदर नहीं लगती हैं, तारे सुंदर नहीं लगते हैं, दूर दूर के तारे सुंदर लगते हैं, निकट के फीके हो जाते हैं, और कुमुदनियां विकसित होती हैं सरोवरों में। लेकिन ये सब एक साथ हो रहा है, विमान आकाश की तरह है ऐसा लगता था, और करदम जी चंद्रमा की तरह तथा विद्याधरियां आदि स्त्रियां ये सब तारा के समान और उनकी आंखें जो हैं वो कमलनी के समान कुमुद के समान लग रहे थे, इतना सुंदर लग रहे थे, और सब साथ साथ पास में उस विमान पर ये बहुत सुंदर लग रहे थे। लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि करदम जी अभी भी अपनी महिमा में ही अवस्थित थे, अलुप्त महिमा। मैं तो ये कथा कहते समय ये सब शब्द दे रहे हैं, करदम जी अपनी पत्नी के साथ चढ़े, तो ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि कोई कामी व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ अब भ्रमण के लिए निकला है। अलुप्त महिमा, उनकी महिमा लुप्त नहीं हुई थी, अर्थात वे पूर्ण जितेंद्रिय थे, भगवान में उनका मन रम रहा था। 1000 किशोरी कन्याओं के साथ वे निकल रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ निकल रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करेंगे कई वर्षों तक, 100 वर्ष तक, यहां भागवत में लिखा है 100 वर्ष तक ये भ्रमण करेंगे, फिर भी अलुप्त महिमा, अपनी महिमा में ही अवस्थित। यह अद्भुत बात कही जा रही है, किसी को किसी के साथ देख करके ही अनुमान नहीं कर लेना चाहिए कि यह व्यक्ति बस ऐसा है, ये है, वो है। वो करदम जी अपनी महिमा में थे, भगवान की भक्ति में थे, अपने स्वरूप में थे, अलुप्त महिमा। बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है, इतनी सुंदरी देवहूति के साथ होकर के और 1000 कन्याओं के साथ भी वे बिल्कुल। तो यहां पर एक शब्द करे प्रिय अनुरक्त, वे अनुरक्त थे देहूति में। अनुरक्त का यह अर्थ नहीं है कि वे विषय भोग के लिए उत्सुक थे, अनुरक्त का यह अर्थ है कि वो चाहती थी विषय भोग, तो उसमें इनकी सहमति थी, विरक्त नहीं थे, अनुरक्त थे। इसका अर्थ है कि जो चाहते हैं उसको पूरा करना चाहते हैं, प्रेम से पूरा करना चाहते हैं, परंतु अपनी महिमा में थे, अपने स्वरूप में बिल्कुल थे। विद्याधरी रूपचीर्ण बपुर विमान है, और विद्याधरियों के द्वारा उनका शरीर भी सजाया गया, जैसे दहूति का सजाया गया वैसे इनका भी सब तरह से श्रृंगार किया गया। ये भी परम सुंदर है, अपिच्छ का अर्थ ही है अति सुंदर, अति सुंदर कश्यप करदम जी थे, और आकाश में अस्थित चंद्रमा जितना सुंदर लगता है ताराओं और कुमुदनियों से युक्त होकर के, ऐसे उस विमान में विद्याधरियों के साथ होकर के सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। तेनाष्ट लोकप विहार कुला चलेन्द्र द्रोणी सोनंग सख मारुत सौभगासु सिद्ध नितो दिधुनिपात शिव स्वनासु रे मे चिरम धन दवल ललना बरू थी। अत्यंत सुंदरी ललनाओं के झुंड में रह करके करदम जी बहुत काल तक रे में रमण किए। रमण का यहां यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि स्वयं भी सुख का अनुभव कर रहे थे, भगवान की भक्ति के सुख से इतना पूर्ण है कि यह नहीं कहा जा सकता है रेमे का अर्थ है कि वो रमण कर रहे थे, सुख का अनुभव कर रहे थे। यहां रेमे का अर्थ है रमया मास, वो रमा रहे थे, वो देहूति को प्रसन्न करना चाहते थे। 8 लोकपाल हैं, उन लोकपालों के लिए इस ब्रह्मांड में कुछ रिजर्व स्थान है कि वही वहां विहार कर सकते हो, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। 8 लोकपाल में प्राची दिशा के, पूर्व दिशा के लोकपाल हैं इंद्र, जोन बटा हुआ है, वरुण जी पश्चिम दिशा के हैं, जमराज जी दक्षिण दिशा के हैं, और इस तरह अनेक दिशा और कोण, 4 कोण हैं और 4 दिशाएं हैं, तो ये 8 जोन में बटा हुआ है सब विभाग और भी कई चीज। इनके जो अध्यक्ष हैं उनको लोकपाल कहा गया है। 3 अष्ट लोकपाल विहार कुला चलेन्द्र, मेरु पर्वत का जो क्षेत्र है, मेरु पर्वत के चारों तरफ और सब ये आठ लोकपालों की विहार स्थली रखी गई है, जहां वे जाते हैं अपनी पत्नियों के साथ, घूमते हैं, विहार करते हैं और गंधर्वादी के साथ। तो कुलाचलेन्द्र मेरु पर्वत के घाटियों में, द्रोणियों में ये विहार कर रहे थे, जहां पर अनंग सखमार्ग सौभगास। वो घाटियां कैसी हैं कि अनंग का, कामदेव का सहायक अर्थात सखा मारुत चल रहा था। मारुत का तो यहां हवा है, हवा मंद, सुगंधित और शीतल। ये हवा के तीन गुण हैं और इस प्रकार की हवा को अनंग का सखा कहा गया, काम वासना को बढ़ाने वाली हवा। ऐसी वहां हवा चलती है, मंद सुगंध और शीतल। तो ऐसी हवाओं से युक्त इन घाटियों में, द्रोणियों में ये विहार कर रहे थे सिद्धर नितो। तो क्या ये प्रश्न होता है कि कर्दम जी जब ये 1000 स्त्रियों को लेकर के चले हैं और देवती को और देवताओं के लोक में विहार करने चले हैं, तो कोई देख करके कह सकता है कि अरे बाप रे बाप, ये ऋषि साधु जो इतना दिन भजन किया और अब स्त्रियों को लेकर के घूम रहा है, वो कह सकता था। ये स्वाभाविक है, लोग थूकते हैं कि क्या हो गया। लेकिन सिद्ध हिन्दु तो जितने भी सिद्ध थे, परफेक्ट ऋषि मुनि, वे सब प्रणाम कर रहे थे कर्दम जी को, सिद्ध हिन्दु तो, क्योंकि उनको मालूम था कि यह व्यक्ति अपनी महिमा में है। देखने में बिल्कुल विपरीत दशा लग रही थी, पर सिद्ध हिन्दु तो सिद्धों के द्वारा नमस्कृत थे। नुत सब प्रणाम करते थे, इनका गुण गाते थे, सिद्धर नुतो द्विधुनिपात शिव सोनासु। और मेरु पर्वत की घाटियों का वर्णन करते हुए, द्रोणियों का वर्णन करते हुए मैत्रेय जी कहते हैं कि द्विधुनि गंगा जी, गंगा जी जब गिरती थी घाटियों में तो उनका इतना सुंदर और कल्याणकारी आवाज आता था, इसका अर्थ झरझर झरने झर रहे थे, गंगा जी चारों तरफ बहती थी। यह भी एक बहुत बड़ा सुख है, शीतल और निर्मल जल गिरता था। तो ऐसी घाटियों में, मेरु पर्वत में, रेमे चिरम चिरकाल तक विहार किए कर्दम जी। चिरम और कहां कहां विहार किए, वैशंभ के, सुरसने, नंदने, पुष्पभद्र के, मानसे, चैत्र रथे च, रेमे रामया रतः। वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्रक और मानसरोवर और चैत्ररथ एक वन है। यह पांच वनों का नाम लिखा गया है और मानस एक सरोवर है स्वर्ग में। तो यहां विहार किए। वास्तव में स्त्री पुरुष के परस्पर के सुख के लिए वन ही मुख्य स्थान होता है। सिटी में, शहर में क्या कोई विहार करेगा जहां हवा ही शुद्ध नहीं है। यहां मान लीजिए भवन बना हुआ है तो बगल में ही नाला और बैतरणी नदी निकली हुई है, क्या कोई विहार करेगा। बॉम्बे में मैं जा रहा था उधर बांद्रा की तरफ, माहिम सर, तो देखा बांद्रा के पास एक बैतरणी निकली हुई बह रही है, इतनी दुर्गंध फैलती है। नरक लोक में, नरक के परीक्षा के रूप में चारों तरफ एक नदी है जिसको बैतरणी कहते हैं। तो नरक में जितने प्राणी जाते हैं पापी, उनको दुर्गंधित हवा देने के लिए वो नदी की व्यवस्था है। उसमें मल मूत्र पीभ खंखार पता नहीं दुनिया में कहां से इतना सप्लाई हुआ है। बहुत चौड़ी नदी है और चारों तरफ नरक के है वो, उसमें कुछ पापियों को डाल दिया जाता है सीधा और बाकी तो सब उसके दुर्गंधित हवा से परेशान रहते। यहां क्या कोई भोग भोगेगा, न शरीर में दम है, न बाहर का वातावरण खुश है, कोई सुगंधित है, न कुछ भी। यह स्थान केवल भक्ति करने के लिए है वास्तव में, ये कहीं काम ठीक से होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न यहाँ भोजन ठीक से है, न पीने के लिए कुछ मिलता है, शरीर में कोई शक्ति नहीं है, शरीर भोगने के लिए है ही नहीं, ये कहीं काम कर सकता है। और वही सबसे ज्यादा जरूरी है, भक्ति कर सकता है व्यक्ति। कभी कभी लोग पूछा करते हैं कि भगवान के सारे अवतार भारत में होते हैं, सारे ऋषि मुनि होते हैं, भगवान यहां दुख इतना क्यों भर दिए? इसी के लिए भरे कि आदमी फंसने ना पावे, मेरा भजन करे, इसी के लिए दुख भरे हैं वास्तव में। यह जरूरी था, और इतने दुख के बाद भी मूर्ख लोग इसी में सुख मान लेते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते। फिर भी भगवान अपनी व्यवस्था बीच बीच में कायम रखते हैं, जैसे सुनामी लहर भेजती है। अब भी तो जरा आंख खोलो, लेकिन फिर भी अंधे लोग नहीं विचार करते। कभी भूकंप हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ शरीर में लकवा मार देना, हार्ट अटैक हो जाना, तो इन सबसे सावधान होना चाहिए ना। कृष्ण का भजन करना चाहिए। यदि भगवान यहां दुख की व्यवस्था न करें तो आदमी और मतवाला हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। यह जरूरी है। ये भोग स्थान नहीं है, भोगने का स्थान नहीं। भोग का स्थान तो मेरु पर्वत की घाटियां, जहां पर सब सुविधा है। इस तरह शरीर भी हजारों वर्ष तक जीवित रहता है, बलवान रहता है, पीने के लिए अमृत है, और स्त्रियां ऐसी मिलती हैं जिनके शरीर से कमल की सुगंध निकलती है। ये सब चीज उधर के लिए है, यहां तो केवल भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति करेगा व्यक्ति तो वो सब उन सब भोगों को नरक जैसा समझ लेगा, वो तो वैकुंठ जाएगा, कभी कामना भी नहीं कर सकता। अब देखेंगे कि देवहूति ने क्या रियलाइजेशन किया ये सब भोग भोग करके। उसी स्टैंडर्ड का खाना रोज, और उसी स्टैंडर्ड का पीना घूमना, ये सब हो रहा था। सबसे बेस्ट स्थान, प्लेस जहां पर कि बेस्ट भोग भोगा जा सकता है, वह है वैश्रम भाग, सुरसन, नंदन वन, पुष्प भद्रक, चैतरथ और मानस। रेमे रामया रतह, यह रतह शब्द का हमेशा अर्थ लेना चाहिए। बाहर से दिखाते थे कि उसमें अनुरक्त है, लेकिन वास्तव में ये अपने स्वरूप में थे। भ्रजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा वैमानिकान अत्यसेत चरण लोकान यथा नीलः। अरे इस तरह से घूम सकते थे, कहीं भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कहीं वीसा की जरूरत नहीं थी, कुछ नहीं था। जैसे अनिलह, जैसे वायु, वायु सर्वत्र संचार करता है, क्या इसको परमिशन लेना पड़ता है किसी का? वायु चलता है, हवा चलती है, तो किसी के भी घर में प्रवेश कर सकती है। वहां लिखा हुआ भले कि नो एडमिशन, लेकिन वायु इस पर विचार नहीं करता है, नो एडमिशन या एडमिशन सब जगह जाता है। इसी तरह से करदम जी के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, बिल्कुल रिजर्व स्थान था, प्राइवेट स्थान होता था, फिर भी जाते सब जगह। तो अपने चमकते हुए विमान पर चढ़ करके और इस तरह भोग भोगते हुए जहां जाते थे, वैमानिकान अत्य से था, अन्य जितने भी वैमानिक थे विमान पर चलने वाले देवता लोग, इंद्र आदि, सब इनके आगे फीके हो गए। अत्य से तो अतिक्रम्य, अतिक्रमण कर दिए, तो सब पीछे छूट गए इनके। इस तरह लोकों में घुमा करते थे। इतना इतनी बड़ी उपलब्धि, इतना बड़ा लाभ, ये कैसे हुआ? मैत्री जी कहते हैं भगवान की भक्ति के कारण हुआ है। किम दुरापादनं तेषां पुंसां उद्दाम चेतसां जयराश्रितस्तीर्थपदश्चरणो व्यसनात्ययः। उन धीर पुरुषों के लिए जो भगवान श्रीकृष्ण के, विष्णु के चरण कमलों का आश्रय लिए हैं, उनके लिए किम दुरापादनम, क्या दुर्लभ है? कुछ भी दुर्लभ नहीं। भगवान के चरण कमलों का जिन्होंने आश्रय लिया है, जो भक्त बने हैं, उनके लिए क्या दुर्लभ है? इंद्र आदि लोकपालों से भी बढ़ करके भोग मिलना, और सर्वत्र पहुंचे, कहीं कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, और सब फीके हो गए इनके वैभव के आगे। तो यह लोक के लिए वास्तव में बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसी उपलब्धि कहां से मिली, क्या इन्होंने किया था। मैत्रेय जी कहते हैं यह किया था कि कृष्ण की शरण लिया था, विष्णु का भजन किया था, तो किम दुरापादनम थे, सम उनके लिए क्या दुर्लभ है, जिनके द्वारा भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया गया है, जो चरण कमलों के आश्रय है, कृष्ण को तीर्थ पद कहा जाता है। यह तीर्थ पद शब्द है और षष्ठी विभक्ति में पद, तीर्थपाद के चरण कमलों का जो आश्रय लिए हैं उनके लिए क्या दुर्लभ है। भगवान के चरण तो संसार का भी नाश कर देते हैं, संसार का मतलब जीव के जन्म मरण को मिटा देते हैं, व्यसन अत्यय। भगवान के चरण कमल की विशेषता है, कोई व्यक्ति जब उसका आश्रय लेता है तो उसका सारा दुख मिट जाता है, व्यसन अत्यय। व्यसन का अर्थ है दुख अथवा जन्म मरण आदि संसार परंपरा, ये तभी तक जन्म मरण आदि दुख है जब तक कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के चरण कमलों की शरण नहीं लिया, शरण लेते ही सारा दुख दूर हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के युग में मनुष्यों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, वे शरण तो लेते हैं लेकिन बिल्कुल 10th क्लास के लोगों का शरण लेते हैं। तो ये बाबा तो ये स्वामी तो वह यह वह उसी को बस समझते हैं, ओम जय जगदीश हरे, ये समाप्त हो जाते, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वास्तव में विष्णु ही परम ईश्वर हैं, उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। वो जानते हैं कि अगर हम इस बाबा की शरण ले रहे हैं उसकी शरण ले रहे हैं तो हमारा दुख बढ़ जाए, दुख बढ़ेगा क्या, दुख घटेगा क्या और बढ़ेगा, वास्तव दुख बढ़ रहा है। एक तो अज्ञान बढ़ रहा है, भागवत में देवता लोग स्वयं अपने मुख से कहे हैं कि हे नाथ, जो व्यक्ति आपके चरण कमल को छोड़ करके दूसरे का सहारा लेता है वह वैसा मूर्ख है जैसे कोई व्यक्ति कुत्ते की पूंछ पकड़ और समुद्र पार कर जाऊं। मूर्ख कहीं समुद्र में क्या पार करेगा, समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं और बीच में करंट ऐसा विषम चलता है कि कोई व्यक्ति बिना जहाज के बिना नौका के तो उसमें पार हो ही नहीं सकता। किसी कुत्ता को छोड़ दिया गया हो समुद्र में कि तुम पार करो और उसके पीछे उसके चेले हजारों कुत्ते भी पार हो रहे हो, तो कुछ दूर जाते जाते तो सब डूबेंगे मरेंगे, वो गुरु भी कुत्ता गुरु और चेला गुरु चेला कुत्ता वो सब मरेंगे निश्चित है, कहीं नहीं जा सकते और देखते देखते डूबकर मर जाएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत दूर जाकर के मरेंगे। और ऐसे कुत्ते की कोई पूछ पकड़े कि मैं भी इनकी कृपा से भवसागर पार कर जाऊंगा, ये समुद्र पार कर जाऊंगा, मूर्ख कहीं। ये संसार जिसका बनाया हुआ है, जो इस विश्व के सर्वेश्वर हैं मालिक हैं, उनका चरण कमल न पकड़ करके और कुत्ते की चरण कुत्ते का चरण पकड़ रहे पूछ पकड़ रहे सोचते हम पार हो जाएंगे बाबा की कृपा से, बीबी की कृपा से हम पार हो जाएंगे, क्या पार हो, कृष्ण की कृपा से पार हो। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनहरी भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। हो सकता है कि पानी के मथने से घी निकल जाए, ये असंभव चीज है, आज तक न हुआ है न हो सकता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हो सकता है यह बात कि पानी के मथने से घी निकलने लगे और बालू के पेरने से तेल निकलने लगे लेकिन बिना कृष्ण के भजन के कोई भवसागर तर जाए ये नहीं हो सकता है और सब चीज हो जाएगा लेकिन विष्णु के चरण के आश्रय के बिना और कुछ नहीं, सब भवसागर नहीं तरा जा सकता। यह बिल्कुल अकाट्य सिद्धांत है। मैत्रेय जी कहते हैं कि उन पुरुषों के लिए, उन भक्तों के लिए जो भगवान के चरणों का आश्रय लिए हैं, क्या दुर्लभ है, कुछ भी दुर्लभ नहीं। भगवान के चरण कमल तो संसार भय का नाश कर देते हैं, जन्म मरण की परंपरा मिटा देते हैं। वास्तव में जनता में भगवान विष्णु को बताना आवश्यक है। लोगों को ये भ्रम है कि कोई भी किसी का भजन करो, किसी का आश्रय लो, सबे कहीं है, सबे कहीं जगह जाएंगे। कभी नहीं, जगन्नाथ जी का भजन करना चाहिए। आप लोगों का तो बहुत बड़ा भाग्य है कि वास्तव में इस प्रदेश के इष्ट देव जगन्नाथ जी और ये लिंगराज आदि सब उनके सेवक हैं, भजन करते रहते हैं ये लोग। ये सब, ये बात सत्य है, ये सब सेवक हैं भगवान कृष्ण के, ब्रह्मा जी, शिव जी। जब ये लोग सेवक हैं तो औरों की तो बात ही क्या है। भागवत में एक प्रश्न उठाया गया है, भगवान कौन है? तो स्पष्ट कहा गया है कि जिसके चरण कमल से गंगा जी निकलती हैं वो भगवान है, और शिव जी उस गंगा को अपने जटा में धारण करते हैं, और ब्रह्मा जी अपने कमंडल में वो चरणामृत लिए। इसके द्वारा सिद्ध हो गया कि इस जगत का ईश्वर कौन है। वास्तव में जगताम नाथ है जगन्नाथ, जो समस्त जीवों के नाथ हैं, रक्षक हैं, वो हैं जगन्नाथ। जगताम का अर्थ जीवा नाम, जगताम जीवा नाम नाथ रक्षक है जगन्नाथ। जगन्नाथ जी सबके हैं, वास्तव में सबके ईश्वर है। तो ऐसे जगन्नाथ जी का भजन करना चाहिए। मैत्रेय जी उत्तर दे रहे हैं कि करदम जी को यह अद्भुत उपलब्धि समस्त देवताओं से भी बढ़ करके कैसे हुई, केवल विष्णु का भजन करने से। उनके लिए क्या दुर्लभ है, कोई भी व्यक्ति करदम जी जैसा हो सकता है यदि भगवान के चरणों का आश्रय ले तो। भगवान की कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ध्रुव महाराज ने भगवान के चरणों का आश्रय लिया था, जब वो भजन कर रहे थे खड़ा होकर के, उनके अंगूठे के भार से पृथ्वी झुक गई एक तरफ। और यही मैत्रेय जी कथा कहते समय कहते हैं कि जैसे नौका पर हाथी को चढ़ा दिया जाए तो नौका बाएं दाएं से होती है, ऐसे ये पृथ्वी हिलने लगी ध्रुव महाराज के चरण के भार से, ऐसा हुआ था। और जब वैकुंठ गए तो मृत्यु के सिर पर पैर दे करके गए थे। इस प्रकार की शांत तो कोई दिखाई नहीं सकता। इसी शरीर से पार्षद बनकर के गए और मृत्यु के सिर पर पैर देकर विमान पर चढ़े थे। तो जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं, कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है करदम जी के लिए। तो इस प्रकार बीच बीच में संदेश दिया जाता है कि भगवान का भजन करना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए। प्रेक्षित्वा भुवो गोलं पत्नी जावान स्व संस्थया बहुआश्चर्य महायोगी स्वाश्रमाय निवर्तत। इस प्रकार जहां तक ये भूमंडल है, भूगोल है, ये ब्रह्मांड है, स्व संस्थया अपनी संस्था के साथ, नदी, पहाड़, समुद्र आदि जहां जहां जैसे रखे गए, बनाए गए ईश्वर के द्वारा, इन सब बहुत आश्चर्यों से युक्त ब्रह्मांड में सब जगह भ्रमण करके तब करदम जी अपने आश्रम लौटने की मन में सोचे। ये सब घुमा करके अपनी पत्नी को संतुष्ट करके विभज्य नवधात्मान मानवीं श्रुतोत्सुकान रामानिरमयन रे में वर्ष पुगान मुहूर्तवान। विभज्य नवधात्मान मानवीं श्रुतोत्सुकान रामानिरमयन रे में वर्ष पुगान मुहूर्तवान। करदम जी अपनी योग शक्ति से नौ बन गए थे, नौ करदम जी, और देहूति एक ही थी, लेकिन इस तरह से अपनी योग शक्ति से अपने को नौ रूप में विभाजित करके और उन्होंने देहूति को सुख दिया। रामम निरमयन रे में उसको सुखी करते हुए उन्होंने विहार किया वर्ष पूगान, सैकड़ों वर्ष तक, सैकड़ों वर्ष तक विहार किए। पर कैसे मुहूर्तवत, यही है संसार के भोगों की दशा, क्षण भर की तरह वो समय बीत गया। भोगों में वास्तव में कोई दम नहीं है। किसी व्यक्ति को इस संशय में नहीं, इस संकल्प में नहीं रहना चाहिए कि हमारे पास धन होगा तो मैं ये भोगूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। एक तो भोग भोगना जीवन का नाश करना है, और भोगते भोगते भी इंद्रियों को तृप्ति नहीं होती है। अभी तो इंद्रियां ये सोचती हैं कि अभी तो मैं चालू भी नहीं किया और मरने का समय आ गया, आदमी यही सोचता है कि हाय रे, मैं तो अभी ना अच्छा से खाया पिया, न सोया, न भोग किया और मैं मरने जा रहा हूं। हाय रे, कोई भी व्यक्ति से पूछे उसका यही निर्णय होगा। कोई नहीं कह सकता है नहीं नहीं, मैं पूरा भोग चुका संसार और अब मैं बैठा हूं मृत्यु की जो इच्छा हो करे, अब मैं पूर्ण मनोरथ हूं। क्या कोई कहेगा? वो कहेगा नहीं, कुछ और दिन हमको मिलता, थोड़ा बाद में मरता तो अच्छा होता, अभी तो सब कुछ भोगना बाकी रह गया। प्रत्येक शरीर में जीव यही सोचता है, भोगों से कभी उसकी तृप्ति नहीं होती है, और इसलिए नहीं तृप्ति होती है कि भोगों में कोई सुख है ही नहीं, उनमें कोई सुख नहीं है, दुख है, इसीलिए जीव को कभी सुख का अनुभव नहीं होता, कभी तृप्ति नहीं होती, जलता रहता है। विद्या कवि ठाकुर अपने पद में कहते, तातल सैकत बार बिंदु सन सुतमित रमन समाज, तो ही विसार मनता है समर्पिन अब मज हव कौन काज। तो जैसे मरुभूमि है, मरुभूमि में तप्त बालुका भरी रहती है, तातल सैकत, और वहां पर कोई एक बूंद पानी डाले मरुभूमि में तो क्या मरुभूमि को गीला कर देगा? एक बूंद पानी गीला नहीं कर सकता, बल्कि अपनी सत्ता खो देगा, पता ही नहीं चलेगा ये पानी कहां गया क्या हो। इस तरह जीव को जितनी भोगों की लालसा है, जितने उसके मनोरथ हैं, उस अनुपात में यहां पर उसको बहुत कम भोग मिलता है। ये स्वर्ग में भी कहीं भोग नहीं है। अगर मान लीजिए किसी को इतनी प्यास है कि वह व्यक्ति 2 लीटर पानी पी सकता है, मान लीजिए इतनी प्यास है, तो उसको मिलता कितना है पानी? सीकर। सीकर का अर्थ है कि सीख को एक लोटा में बोर करके और ऐसे छिड़केंगे तो उसकी जितनी सूक्ष्म बूंद बनेगी, तो एक सूक्ष्म बूंद को सीकर कहते हैं। कोई प्यास से मर रहा है और उसको कोई एक सीकर दे जिह्वा पर, लो लो तृप्त हो जाओ, तो क्या वो तृप्त होगा? कभी तृप्त नहीं हो सकता। यहां जीव को जितनी लालसा है जिस भोग की, वो वास्तव में भोग है वैकुंठ का, वो दिव्य लालसा है उसकी, वो सुख मिलेगा, कृष्ण का नाम मिलेगा, कृष्ण का दर्शन मिलेगा, कृष्ण का स्पर्श मिलेगा और कृष्ण का प्रसाद मिलेगा, तब तो वो सुखी हो सकता है, अन्यथा और सब तो ये है ही नहीं, ये भोग है ही नहीं, वास्तव में दुख है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नयेवते अद्यंतवंत कौनते न ते सुरमते बुध। यहां सुख है ही नहीं। जैसे मैं कल उदाहरण दिया था, फतिंगा ये समझता है कि दीपक के लौ को, शिखा को छू करके मैं सुखी हो जाऊंगा, तो तो सुख है ही नहीं, वो तो दुख है, और जब ही छूता है तब ही दुख का अनुभव उसे होता है, मर जाता है। यहां न तो किसी स्पर्श में सुख है, न किसी रस में, किसी पेय पदार्थ में सुख है, न शब्द में सुख है, क्योंकि सब मैटेरियल है, जड़ है, और जीव है स्पिरिचुअल। जीव स्पिरिचुअल वस्तुओं से ही सुखी हो सकता है, जड़ वस्तु से नहीं। तो स्पिरिचुअल फैक्ट्स ये सब रूप रस गंध आदि तो कृष्ण से मिलते हैं। यही कारण है कि सुख नहीं मिलता है। करदम जी का वह समय 100 वर्ष मुहूर्तवत चला गया, कोई सुख का अनुभव नहीं हुआ, यह अर्थ। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सुख में विभोर थे इसलिए समय चला गया पता नहीं चला, नहीं, कोई सुखानुभव नहीं हुआ, कोई तृप्ति नहीं हुई। तस्मिन् विमान उत्कृष्टां सज्जां रति करीं श्रिता न चा बुद्धेत तम कालं पत्यापि चेन संगता। ये 100 वर्ष तक स्त्री संग करना और ब्रजपात नहीं हुआ, यह एक योगी की शक्ति है। अखंड बीज बना रहा, यह भी वास्तव में एक लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ी सफलता थी, बहुत बड़ा सुख था। उस भवन में, उस विमान में बहुत उत्कृष्ट सज्जाएं थी, उत्कृष्टम सज्जाम रति करम सीता, एक वचन में वर्णन किया जा रहा है जाति के लिए। तो बहुत सुंदर सज्जा थी, उत्कृष्ट जो रति करीम श्रिता, जो वास्तव में स्त्री पुरुष के रति सुख को बढ़ाने वाली सज्जा थी, उस पर थी। कर्दन जी इस 100 वर्ष के समय को मुहूर्तवत बिता दू। और इसके लिए कहा जा रहा है देहूति के लिए, तस्मिन विमान उत्कृष्टम सज्जाम रति करम श्रुता न च बुद्धतम कालम पत्या पिछेन संगता। अपने परम सुंदर पति के साथ बहुत सुंदर सज्जा पर प्राय आश्रित रहती थी, लेकिन इस विशाल काल को न अबुद्ध तो समझ नहीं पाए कि इतना समय जीवन का व्यर्थ बीत गया, क्षण भर की तरह बिता दी। अब मैत्रेय जी कहते हैं, एवं योगानुभावे न दंपत्यो रममाणयो हो शतम व्यतीयु सरद काम लालसयो मनात। इस प्रकार अपने योगानुभाव से, योग शक्ति से सारे भोग प्राप्त किए, शरीर प्राप्त किए सब, और रम रहे थे दोनों, दंपत्य रममाणयो, देहूति और कर्दन जी रमण कर रहे थे। रमण का अर्थ है सब तरह से, स्पर्श का सुख, एक दूसरे से बोलने का सुख, कई तरह के सुख, खान पान सब कुछ, अंग संग। कितने वर्षों तक किए? 100 साल, 100 वर्ष तक। सतम व्यतीय शरद, 100 शरद बीत गया, चाहे वर्षा 100 बीते या शरद 100 बीते, ये कही बात, 100 शरद काल बीत गए। लेकिन कामलाल से कि कैसे बीते 100 वर्ष, मनाक एक मिनट की तरह बीत गए, थोड़े देर के लिए बीत। तो क्या कहा जा रहा है कथा में कि तो देहूति को ऐसा प्रतीत हुआ, और देहूति के साथ कर्दम जी को भी कहा जा रहा है कथा सौंदर्य के लिए, इन दोनों का समय ऐसा बीता लगा कि 1 सेकंड जैसा बीत गया, मतलब हम तो कुछ भोग किए ही नहीं, लालसा ज्यों की त्यों बने रह गए, हमको कुछ भी सुख नहीं मिला, कुछ भी भोग नहीं मिला, या नहीं मिला, ऐसा लगा वो 100 वर्ष क्षण की तरह बीत गया। मतलब कहने का अर्थ है कि निरंतर भोगों की लालसा बनी ही रह गई, बनी ही रह गई। इंद्रियां जब दूषित हो जाती हैं भोगों से, तो ऐसा नहीं है कि उनमें विरक्ति आती है, भगवान का भजन करें, वो भोग प्रवण हो जाती हैं, भोगों की ही लालसा बनी रहती है। जो लोग जितना अच्छा खाते हैं तो उनको अच्छा खाने की लालसा रहती है, अच्छा पहनते हैं तो अच्छा पहनने की ही लालसा बढ़ती जाती है, स्त्री संग आदि की भी लालसा बढ़ती जाती है। तो ऐसा प्रतीत हुआ कर्दन जी और देहूति को कि बहुत कम समय हमको मिला, बहुत कम चांस मिला भोगने का, इतने उत्कृष्ट भोगोपकरण के साथ, और स्थान भी विमान भी सब कुछ है, निर्बाध रूप से 100 वर्ष तक इंद्रियों का भोग भोगे, और लगा कि हम तो कुछ भोगे ही नहीं। ये दशा है इन भोगों की, वास्तविकता यही है। वास्तव में कथा में यही मुख्य बातें हैं। यह कथा इसलिए नहीं कही जा रही है कि हम स्त्री पुरुष के कामोपभोग के चेष्टाओं को और वस्तुओं को समझें और नहीं इकट्ठा करें, हम भी भोगें। उनकी जो दशा हुई, उनका जो निर्णय हुआ, रियलाइजेशन हुआ, उस पर ध्यान देने की बात। जब इतने सफल दंपति को सब तरह से श्रेष्ठ, सब प्रकार से उत्कृष्ट भोग भोगने के बाद भी सुखानुभव नहीं हुआ, ये नहीं समझ पाए कि हम भोग भोगे हैं, सोचे कि तो एक क्षण के समान बीत गया, तो फिर हम लोगों की क्या बात, न भोग सुलभ है, न वैसा शरीर है, न कुछ भी है, क्या हम संतुष्ट हो पाएंगे, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान की बातें सुननी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, इससे भगवान में मन लग जाता है और व्यक्ति सुखी हो जाता है, और जो दुख के स्थान है उनसे मुक्त हो जाता है ये सब भोगों से। 3 श्लोकों में लगातार इस बात को मैत्रेय जी कह रहे हैं, रे में वर्ष पुगन मुहूर्तवत नचा बुद्धतम कालम, और लास्ट में कहा गया सतम व्यतीयु सर्वम काम लालस्य और मनाक। मनाक माने अल्प, 100 वर्ष उनका अति अल्प काल की तरह बीत गया। अंत में कहते हैं, तस्याम आधत्त रेतस्ताम भावयन आत्मनात्मवित नोधा विधाय रूपम स्वम सर्वसंकल्प विद्विहु। कर्दम जी सबके संकल्प को समझ जाते थे, हृदय में क्या इच्छा है इसको जानते थे, तो देहूति की क्या इच्छा है ये सब जानते थे, सारे संकल्पों को जानते थे। देहूति की इच्छा थी उससे बहुत बहुत संतान प्राप्त हो, लेकिन उधर से शर्त थी, जब देहूति गर्भ धारण करेगी उसके बाद मैं देहूति के साथ नहीं रहूंगा। यह भी एक जितेंद्रियता की पहचान है, अन्यथा कामी व्यक्ति कैसे मान सकता है एक गर्भ के बाद दूसरा गर्भ धारण कराना चाहेगा, तीसरा कराना चाहेगा, या बिना गर्भ धारण किए भी वो स्त्री का संग चाहेगा। लेकिन कर्दम जी वास्तव में एक जितेंद्रिय महात्मा थे, भगवान की भक्ति में सराबोर थे, तो उन्होंने देखा कि ये मनुपुत्री देवयानी देवहूति बहुत सुरतोत्सुका है, संभोग के लिए उत्सुक है, तो उसके लिए तो उन्होंने जैसा पहले मैं कथा कहा अवसर दिया, लेकिन उसकी इच्छा थी कि हमको बहुत संतान प्राप्त हो। तो इस बात को समझकर कर्दम जी अपने को नौ रूप में विभक्त करके और देहूति का संग किए। देहूति में काम की प्रबलता थी। ये कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष में जिसमें काम वासना अधिक होती है तो संतान भी वैसी ही होती है। अगर स्त्री में कामुकता ज्यादा है तो लड़की होती है, बच्ची होती है, और पुरुष में यदि कामुकता अधिक होती है तो पुरुष होता है, बच्चा होता है। श्रील प्रभुपाद भी बड़े विस्तार से लिखे हैं, सिद्धार्थ स्वामी भी यहां लिखे हुए। तो ये तो निश्चित है कि कर्दम जी में कोई कामुकता थी नहीं, वो तो अपने पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए आसक्त जैसे घूम रहे थे, उसके साथ रह रहे थे। तो नौ रूप बना करके उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए नौ बार वीर्यधान किया। एक ही दिन में नौ पुत्रियों का जन्म हुआ, एक ही दिन में, यहां लिखा गया है, अतः सा सुसुवे सद्यो देवहूति स्त्रिय प्रजा सर्वास्ताचारु सर्वांग्यो नीलोत्पल लोहितोत्पल गंधय। उसी समय सद्य, सद्य का अर्थ तत्काल, जब ही उन्होंने वीर्यधान किया, सौ वर्षों के बाद एक बार वीर्यपात हुआ कर्दम जी का। इस तरह से समर्थ जोगी थे। तो जब वीर्य का आधान किया अपनी पत्नी के गर्भ में, तो उसी दिन नौ बच्चियां उत्पन्न हुई है, पूर्व किशोर अवस्था की बच्ची। ऐसा नहीं कि उन्हें ले जाकर हॉस्पिटल में और प्रसव कराया जाए और पोलियो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये सब असुविधा नहीं थी। देहूति भी इस तरह से समर्थ स्त्री थी। तो नौ बच्चियां हुई। सद्य सिद्धर स्वामी जी कहते हैं तस्मी ने व आहनी, एकस्मी ने व आहनी, एक ही दिन में नौ बच्चियां, बच्चियां नहीं कह सकते हो, किशोर अवस्था की कन्याएं उत्पन्न हुई। सभी परम सुंदर शरीर की थीं और सबके शरीर से लाल कमल की सुगंध निकल रही थी, लोहित उत्पल गंध है। परम सुंदरी, परम गुणवती कन्याएं उत्पन्न हुई। कर्दम जी की इन्हीं कन्याओं में अनुसुईया भी हैं, अरुंधति भी हैं, अरुंधति जो वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी बनेगी बनी है, और अनुसुईया जो अत्रि ऋषि की पत्नी बनी हुई है, अनुसुईया के गर्भ से भी भगवान जन्म लिए हैं। कई कई प्रकार की श्रेष्ठ कन्याएं जो इस जो उत्पन्न हुई हैं, नौ कन्याएं बहुत महत्वपूर्ण, आगे इनका नाम गिनाया जाएगा। तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है, एक ही दिन में नौ कन्याओं का जन्म हुआ, जिस दिन गर्भाधान हुआ उसी दिन, और जन्म लेते ही बिल्कुल किशोर अवस्था के हो जाना या विवाह के योग्य हो जाना उसी दिन। और जब ये नौ कन्याएं घर में उत्पन्न हो गई, तब कर्दम जी, अब जो पूर्व जीवन उनका था, भगवान ने जो आदेश दिया था, वो तैयार हो गए घर छोड़ने के लिए। कहां है काम वासना, कहां काम का कालूस है, जरा सोचना चाहिए। कोई व्यक्ति इस तरह से त्याग करना चाहेगा? लेकिन कर्दम जी के द्वारा एक भूल हो रही थी। अब नौ नौ बच्चियां घर में हैं और इनका विवाह किए बिना ये भागना चाहते थे। यद्यपि घर में धन तो अपार था, देहूति को जहां विवाह करना होता बच्चियों का विवाह कर सकती थी, लेकिन यह एक कठिन काम है स्त्री के लिए। वो कहां वर ढूंढने जाएगी, खोजने जाएगी, ये जिम्मेवारी पति की होती है। लेकिन पति अब भागना चाहते हैं घर छोड़ भागना चाहते, वास्तव में भगवत आदेश का पालन करना चाहते थे, तो उनको इस तरह घर छोड़ने के लिए उत्सुक देह करके देवहूति उनके चरणों में गिर करके रो रो करके प्रार्थना करने लगी। ये प्रसंग फिर शाम को कहा जाएगा, देवहूति क्या निवेदन कर रही, अब इसका मनोभाव बिल्कुल बदल गया। अब भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं थी, भक्ति की लालसा भर गई मन में। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।